started.
सही। अच्छा जी, आज जो है हम सारी गुफ्तगू जो करेंगे ना, वो साइंस पे करेंगे। क्यों? इसलिए कि हम उसकी नज़रियाती तसव्वुरा असास को देख चुके हैं कि मॉडर्निज्म से उसका क्या ताल्लुक है, माशरे के साथ उसका क्या ताल्लुक है। आज पहले हम ये बताएंगे पहले सेशन के अंदर कि साइंस बुनियादी तौर पर किसे कहते हैं और साइंस के अंदर नज़रियात से क्या मुराद है, साइंस बहैसियत नज़रिया क्या है और उसको किस किस तरीके से लोगों ने डिफाइन किया है पहले सेशन में। उसके बाद जो ब्रेक के बाद जो दूसरा सेशन होगा उसके अंदर फिर हम साइंसी इल्म की साख से या नेचर से बहस करेंगे। पहले हम साइंस की डेफिनेशंस और उसकी मेथडोलॉजी से बात पे बहस करेंगे और फिर उसका उसको हम देखेंगे कि सोशल साइंसेस के अंदर और फिज़िकल साइंसेस के अंदर जब हम ये मेथडोलॉजी अप्लाई करते हैं तो उसके क्या नतायज निकलते हैं, मगरिब में भी क्या निकले और मशरिक़ में भी क्या निकल रहे हैं। सही है। तो पहले हम कहते हैं कि साइंस बुनियादी तौर पर क्या है, वो व्हाट डू वी मीन बाय साइंस, व्हाट इज़ दिस थिंग कॉल्ड साइंस। अभी हम सिर्फ इस सवाल से बहस करेंगे। हमारे यहाँ आम तौर पे जब लोगों के सामने ये कहा जाता है साइंस, तो लोगों के जहन में आता है साइंस से मुराद ये चीज़, पंखे, मोबाइल फोन्स, ये आता है आम तौर पे लोगों के जहन में, टेक्नोलॉजी। ये जो चीज़ें आपके सामने हैं ना, ये साइंस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। ये साइंस की एप्लीकेशन के नतीजे में पैदा होने वाली अशियाए सर्फ है। तो पहले हम देखते हैं कि साइंस बुनियादी तौर पर क्या है। साइंस और टेक्नोलॉजी में एक डिफरेंस है, साइंस के बगैर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो सकती, लेकिन हर साइंटिफिक डिस्कवरी, हर साइंटिफिक इन्वेंशन टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्म नहीं होती। बहुत सारी साइंटिफिक इन्वेंशन और बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज जो होती हैं ज़ाया कर दी जाती, वो टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र होती ही नहीं है। सही है। तो ये भी हम देखेंगे, लेकिन ये हम देखेंगे आखिरी सेशन में, ताकि आपको ये पता चले कि साइंस की अपनी नज़रियाती बुनियादें क्या हैं। देखिए, साइंस को जब लोगों ने डिफाइन करना शुरू किया कि साइंस क्या होती है, तो उसके मुताल्लिक जो पहली बड़ी नज़रियाती दलील है जिस आदमी ने दी मगरिब के अंदर, उसका नाम है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन, बेकन से जब लोगों ने पूछा कि भाई साइंस क्या होती है, तो उसने कहा कि साइंस एक ऐसी मेथडोलॉजी है जो चार स्टेप्स पर इन्हेसार करती है। चार स्टेप क्या है? बेकन के ख्याल में कोई भी तज्जिया या कोई भी इल्मी कोशिश अगर इन चार स्टेप्स के साथ हो, तो उस इल्मी कोशिश को या उस तज्जिये को हम साइंसी तज्जिया या उस नज़र उस इल्म को हम साइंसी इल्म कहेंगे। वो ये चार स्टेप्स हैं कि पहले आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस के बाद आप एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जनरलाइजेशन करेंगे। ये चार स्टेप अगर आप कर पा रहे हैं तो फिर हम आपके उस तज्जिए को या आपके उस इल्म को साइंसी इल्म समझ लेंगे। साइंसी इल्म कब मानेंगे? जब उसके अंदर ये चार बुनियादी स्टेप्स मौजूद हो। एक्सपेरिमेंटेशन पे डायरेक्ट जंप नहीं किया जाता, पहले ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, फिर जनरलाइजेशन। ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है? ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि किसी चीज को हवासे खमसा की बुनियाद पर फाइव सेंसेस के जरिए तजर्बा किया जा सके, उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी कि ऑब्जर्वेशन के लिए आपका जरिया इल्म तजर्बा भी होना चाहिए, जो कि फाइव सेंसेस हैं आपके, और उसके साथ साथ तफक्कुर भी होना चाहिए, रैशनैलिटी। यानी कि फाइव सेंसेस और रैशनैलिटी, इन दोनों की मदद से आप ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जब आप करते हैं चीजों की, तो उन ऑब्जर्वेशन के बाद आप एक नजरिया कायम करते हैं। इस नजरिए को वो कहता है हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस क्या है? किसी भी मसले का इम्कानी हल, टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फर्ज कर लेते हैं कि आप, आपकी ऑब्जर्वेशन ये है कि मुझे देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, यानी कि आंखों को काम करने के लिए रोशनी की जरूरत है। ये आपकी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन है, आप बचपन से ये ऑब्जर्व करते हुए आए कि अंधेरा होता है तो मुझे नजर नहीं आता, अंधेरा होता है तो मुझे नजर नहीं आता। अब आपने एक हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस क्या बनाया? हाइपोथेसिस ये बनाया कि अंधेरे में देखने के लिए रोशनी की जरूरत या रोशनी के का इंतजाम करना जरूरी है। आप जिस जगह पर रहते हैं, फर्ज किया, उस जगह पर रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है, फिर आपने रोशनी पैदा करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटेशन किया और उस एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद पे आपने कोई जनरलाइजेशन कर दी, और वो जनरलाइजेशन ये है कि जब भी लाइट मौजूद, रोशनी मौजूद ना हो, लाइट के इंतज़ाम के लिए मैं ये काम करूँगा। और ये इंतज़ाम फर्ज किया आँख जलाकर या मोमबत्ती जलाकर, लाल लालटेन जलाकर, तो लालटेन बनाने का जो अमल है, अगर इन चार स्टेप से गुजरा है तो लालटेन बनाना भी एक साइंटिफिक एटीट्यूड है। इससे ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। मसलन ये कि अगर एक आदमी ये तजर्बे में है उसके, कि जब धूप किसी चीज के ऊपर पड़ती है, बाहर कोई चीज पड़ी भी हो, तो वो शेप खराब हो जाता है उसका, शेप डैमेज हो जाता है उसका। आपने ये कहा कि भाई ये चीज़ें जब धूप में पड़ी रहती हैं तो ख़राब हो जाती हैं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। अब आपने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन के पीछे आपने एक हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस ये बनाया कि चीज़ें गर्म होने के बाद फैल जाती हैं, ये आपने एक नजरिया कायम किया। अब आप करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन ये किया कि मुख्तलिफ अशिया को आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद आपने देखा कि उनके शेप तब्दील हो रहा है। फ़र्ज किया कि मेटल्स को, कई मेटल्स को आपने गर्म किया और जब भी उनको गर्म किया वो फैल गए, तो आपने फिर एक्सपेरिमेंटेशन की बार 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 मुख्तलिफ हालात के अंदर, धूप से चीज़ों को गर्म करके देखा, आग से चीज़ों को गर्म करके देखा, कंडक्शन के ज़रिए, कन्वेक्शन के ज़रिए, रेडिएशन के ज़रिए, कई तरीके से चीज़ों को गर्म करके देखा, हर चीज़ को हमेशा गर्म करने के नतीजे में चीज़ें फैलने लगी, मेटल फैलने लगा, तो आपने ये जनरलाइजेशन की, ऑल मेटल एक्सपैंड व्हेन हीट। तो फ्रांसिस बेकन ये कहेगा कि आपने ये जो फैसला किया है ये एक साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर खूबी ये है कि ऑब्जर्वेशन आप कर रहे थे, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन को मायने आपने पहनाए एक हाइपोथेसिस से, फिर आपने की एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन से क्या मुराद लेता है? एक्सपेरिमेंटेशन से मुराद ये रहता है एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशंस। यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो आप कंट्रोल कंडीशंस में करते हैं। कंट्रोल कंडीशन का क्या मतलब है? चीज़ों का फैलाव या चीज़ों का बिगाड़ या चीज़ों की शेप में तब्दीली जो होती है उसकी कोई एक वजह नहीं होती, सैकड़ों वजूहात हो सकती हैं, सैकड़ों कॉजेज हो सकते हैं। उन बहुत सारे कॉजेज के अंदर से हीट भी एक कॉज है। चीज़ें जब अपना शेप लूज करती हैं तो वो हवा के ज़रिए भी कर सकती हैं, प्रेशर के ज़रिए भी कर सकती हैं, लेकिन अभी हम फोकस करना चाहते हैं कि क्या गर्मी का कोई ताल्लुक है, हीट का कोई ताल्लुक है चीज़ों की शक्ल में तब्दीली से। तो आप एक्सपेरिमेंटेशन में क्या करते हैं, हीट के अलावा जितने फैक्टर्स होते हैं उनको आप कंट्रोल कर लेते हैं। आप लेबॉरेटरी के अंदर उन तमाम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि जिन चीज़ों को हम देखेंगे उनके ऊपर हवा का दबाव एक जैसा रहेगा, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं डालेंगे उसमें, कोई सब में मटेरियल जो सब्सटेंस होगा उनकी जो शेप होगा वो फ्रजाइल नहीं होगा, ये सारी चीज़ें वो देखकर सिर्फ हीट की तब्दीली को नोट करेंगे। यानी कि वेरिएबल्स को, सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेंगे, सिर्फ एक वेरिएबल हीट को छोड़ देंगे। अगर वो मुस्तकिल तौर पर मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को शेप तब्दील होने के मरहले से गुजारने का वाहिद एक कॉज हीट है। ये काम करता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब ये होता है एक ऐसी एक्टिविटी जो कंट्रोल कंडीशन में हो और रिपीटेबल हो, इसे हम कहते हैं री इनैक्टमेंट। बार बार हम उसको करके देखें। तो हमने लोहे को भी गर्म करके देखा, सोने को भी गर्म करके देखा, चांदी को भी गर्म करके देखा, पीतल को भी गर्म करके देखा, बहुत सारी चीज़ों को हमने गर्म किया, सबके अंदर यकसां तौर पर ये प्रॉपर्टी मौजूद थी, लिहाजा हमने फैसला किया ऑल मेटल एक्सपेंड व्हेन हीट। इस मेथडोलॉजी को इब्तिदा के अंदर साइंटिफिक मेथडोलॉजी कहा गया। इसका मतलब है साइंस के अंदर ये चार स्टेप होंगे। ये किसका ख्याल था? फ्रांसिस बेकन का। फ्रांसिस बेकन ने जब ये नज़रिया दे दिया तो कुछ लोग जो थे, जो साइंटिस्ट थे, जो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि फ्रांसिस बेकन ने जो नज़रिया दिया है साइंस का, साइंस ये नहीं होती, साइंस इसके अलावा कुछ और है। वो क्या है? उन्होंने कहा कि ये जो इसने स्टेप्स बताए हैं ये ठीक नहीं है, इसकी ऑर्डर तब्दील करना पड़ेगा। उन्होंने ऑर्डर में क्या तब्दीली की? ऑर्डर में तब्दीली ये की कि उन्होंने कहा साइंस डज नॉट बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन, साइंस बिगिंस विद थियरी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि पहले ऑब्जर्वेशन होती है, उन्होंने कहा कि पहले होता है नजरिया, थियरी। थियरी उसके बाद ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन और उसके बाद जनरलाइजेशन। बेकन के तसव्वुर साइंस के ऊपर लोगों ने एतराज क्या किया, उन्होंने कहा साइंस डज नॉट बिगेन विद ऑब्जर्वेशन, साइंस बिगेन विद थियरी। यानी कि साइंस जो है वो तजर्बे से शुरू नहीं होती बल्कि नजरिए से शुरू होती है। मसलन जो हमने रोशनी के बगैर ना देखने की सलाहियत और रोशनी की मौजूदगी में देखने की जो सलाहियत है, इसका ताल्लुक हमारे तजर्बे से है या हमारे नजरिए से है? आप लोगों के ख्याल में आपके नजरियात पहले होते हैं तजर्बा बाद में होता है, या तजर्बात बाद में होते हैं नजरियात पहले होते हैं? कितने लोगों का ख्याल है कि पहले तजर्बा फिर नजरियात है? आप लोगों का यही ख्याल है कि पहले नजर तजर्बा फिर नजरिया, तजर्बे से नजरियात बनते हैं? नहीं, मसला ये है कि न्यूटन जो है उसके सर पे सेब गिरने के बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का उसे पता चला, लेकिन उससे पहले भी तो लोगों के सरों के ऊपर बहुत कुछ गिरा होगा ना, उनको क्यों नहीं आया ये ख्याल? सेब और भी तो गिरे होंगे लोगों के, वो न्यूटन था भाई, फिजिक्स था वो बहुत बड़ा पहले से है? हाँ, तो उसके पास कुछ नजरियात पहले से होंगे ना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिन लोगों ने बेकन के ऊपर एतराज किया उन लोगों ने कहा कि देखो चमगादड़ को जब अंधेरे में लोगों ने उड़ते हुए देखा तो उनको हैरत हुई। चमगादड़ को जब लोगों ने अंधेरे में उड़ते हुए देखा तो उनको हैरत हुई, तो उन्होंने कहा भाई चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ रही है? ये तजर्बा उनको उनके लिए मसला पैदा कर रहा है या नजरिया उनके लिए मसला पैदा कर रहा है भाई? तजर्बा। अब जो लोग इस थियरी के कायल हैं वो कहते हैं असल में तुम्हारे लिए जो मसाइल पैदा करते हैं वो तजर्बात नहीं नजरियात करते हैं। अंधेरे में चमगादड़ को उड़ते हुए देखकर आपको परेशानी इस वजह से होती है क्योंकि आपने पहले से एक नजरिया आपके जहन में मौजूद है कि रोशनी के बगैर देखा नहीं जा सकता। ये आपके लाशऊर में बैठी हुई है बात, शऊर में नहीं लाशऊर में। जब भी कोई चीज उससे इन्हेराब करेगी ना, आपका ये नजरिया कि अंधेरे होने के बावजूद चमगादड़ उड़ रही है, ये तजर्बा मसला नहीं पैदा कर रहा। इस तजर्बे के पीछे एक नजरिया है कि मैं चूंकि अंधेरे में नहीं देख सकता, इसका मतलब है शायद कोई भी अंधेरे में नहीं देख सकता होगा और ये चमगादड़ अंधेरे में देख सक रही है, इसका मतलब ये है कि चमगादड़ में और मुझ में कोई कदर मुश्तरक है और मुझ में और चमगादड़ में कोई कदर मुख्तलिफ भी है। वो ये है कि चमगादड़ की आंखें शायद बहुत ज्यादा तेज हैं कि ये अंधेरे में भी देख लेती है। नहीं नहीं वो तो सही है, लेकिन ये स्पेल आउट थोड़ी होता है हर नजरिया। आपके जहन में कौन कौन से नजरियात हैं आप बता सकते हैं? मेरे जहन में कौन कौन सा नजरिया है? नहीं। आपने जिंदगी में पहला लफ्ज क्या बोला था? नहीं, आपके तजर्बे में होगा ना पहला लफ्ज आपने बोला, तो आपको पता होगा। बताएं मुझे पहला लफ्ज क्या बोला था माँ के सामने आपने? है कुछ भी कहा हो आपने, पप्पू कहा हो, बप्पू कहा हो, अब्बू कहा हो, पापा कहा हो, टापा कहा हो, कुछ भी कहा हो, लेकिन आपने तजर्बा किया था ना, तजर्बे का इजहार भी कर दिया, लेकिन आपके शऊर में तो नहीं है ना, वो लाशऊर में महफूज है। लेकिन कभी कभार आपको पता है ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इंसानों को होते हैं कि वो 3 साल की उम्र में जैसी उसकी आवाज थी, जो जबान वो बोलता था उसमें उसकी फिक्सेशन हो जाती है, शऊर के ऊपर लाशऊर का वो हिस्सा गालिब आ जाता है, और इंसान 3 साल की उम्र में जैसी आवाज निकालता था और जो बोलता था वो बोलना शुरू कर देता है। इसका मतलब है उसके लाशऊर में वो सब कुछ महफूज है। लेकिन नजरियात जो होते हैं वो उस वक्त इजहार करते हैं जब आपके तजर्बा आपके लाशऊर में छुपे हुए नजरियात की नफी कर दे, फिर आप सोचते हैं, फिर आप उस पर तवज्जो देते हैं। जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होती है उसमें और एक आम ऑब्जर्वेशन में फर्क है। मसलन आपको पता है दुनिया में सबसे छोटी कहानी कौन सी है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट स्टोरी रिटन बाय एनी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड? दुनिया की शॉर्टेस्ट स्टोरी कौन सी है? दुनिया की शॉर्टेस्ट स्टोरी 3 जुमलों के ऊपर है। 3 जुमले। एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है, क्या तुम जिनों पे यकीन रखते हो? दूसरा कहता है नहीं। पहला आदमी गायब हो जाता है। सोचे आप ट्रेन में जा रहे हैं, कंपार्टमेंट में अकेले हो, और आपके सामने बैठा आदमी बोले, भाई जिनों पे यकीन रखते हो? आप कहें नहीं, और वो गायब हो जाए, क्या होगा आपके साथ? सारी तुर्रम खानी एक मेरा खौफ से बेहोश हो जाए शायद वहीं पे। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने आपको कुछ भी नहीं किया, सही है? तो नजरिया आपका ये है कि सामने से आदमी गायब नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी गायब हो जाए तो आपका जो ये नजरिया है ना कि तहलील नहीं हो सकता कोई, आपके पूरी इंपेरिकल फाउंडेशन को हिला कर देता है। तो फ्रांसिस बेकन पे जिन लोगों ने एतराज किया, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा देखो भाई, हम लोग जो आम लोग होते हैं ना, हम लोग जब जिंदगी गुजारते हैं तो हम कुछ नजरियात एडॉप्ट करना शुरू करते हैं बचपन से। जो लैंग्वेज आप बोल रहे होते हो, जो सुन रहे होते हो, जो कर रहे होते हो, उसमें बहुत सारे आपके नजरियात हकीकत से मुताल्लिक बनते चले जाते हैं खुद ही। जैसे फर्ज करो कि एक बच्चा जो है 14वीं का चांद जब भी देखता है तो उसने उस चांद के बारे में एक राय कायम कर ली है। जैसे मार्क्स कहता था कि ये जो भूखा आदमी होता है ना, या भूखा बच्चा होता है, उसको 14वीं का चांद जो है वो महबूब का चेहरा दिखाई नहीं देता, उसको वो चीज बॉल नजर आता है, चीज बॉल या रोटी। 14वीं का चांद जो होता है ना वो रोटी नजर आता है, या मक्खन का गोला नजर आता है, सही है? अगर हॉलैंड का होगा, डच होगा, तो उसको चीज बॉल नजर आएगा, अगर यूरोपियन होगा उसको मक्खन का गोला नजर आएगा। हम तो मक्खन वगैरह, हमारा गरीब आदमी देख नहीं पाता, तो कम से कम रोटी तो वो देखता ही है ना, तो देखो रोटी के शेप का होता है 14वीं। लेकिन अगर पेट भरा हुआ हो तो चांद सूरज धूप सुबह के कशा तारे शमा हर उजाले ने चुराया है उजाला आपका, तो आपको चांद जो है और सूरज और धूप और सुबह और कहकशा और तारे और शमा सब महबूब का चेहरा नजर, हर आदमी को नजर नहीं आता भाई। तो ये जो नजरियात होते हैं ना, वो हर इंसान के साथ साथ चल रहे होते हैं। इन नजरियात में से हर नजरिया साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं होता। ऑब्जर्वेशन वो बनती है जिसकी तरफ आपका बुनियादी नजरिया टकरा जाए। जब आपके बुनियादी नजरिया जो आपके जहन में होते हैं ना, वो टकरा जाते हैं। जैसे आपने ये समझ लिया कि चमगादड़ जो है वो अंधेरे में उड़ती है, तो आपका बुनियादी नजरिया टकरा गया है कि भाई चीजों को देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। अब आप करेंगे एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि चमगादड़ की आंखें इंसानों की आंखों से ज्यादा तेज होती है, सही है। उसके बाद आप करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन। चमगादड़ पे आपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, तो अगर चमगादड़ अंधेरे में देख सकती है तो रोशनी में तो उसे देखना ही चाहिए, लेकिन रोशनी में चमगादड़ को नजर नहीं आता। तो आपने कहा भाई ये क्या चक्कर है इसका, तो आपका दूसरा नजरिया भी टकरा गया। आप तो ये समझे थे अंधेरे में देख सकती है तो दिन में तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा देखती होगी, लेकिन दिन में उसको नजर नहीं आया। फिर आपको ये पता चला कि चमगादड़ आंखों से देखती ही नहीं है। बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि चमगादड़ को शोर से डिस्ट्रैक्ट होती है, अंधेरे से नहीं, शोर से। इसका मतलब है सुनती है, सुनकर एक्ट करती है। तो जिस तरह एक अंधा आदमी, ब्लाइंड आदमी सुनकर बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस कर लेता है जो देखने वाला एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, तो आपको बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला दरअसल चमगादड़ की आंखें इररेलेवेंट होती हैं, रेलेवेंट उसके कान होते हैं। फिर आप जनरलाइजेशन करते हैं कि रास्ता तलाश करने के लिए आंखों से के बजाय दूसरे हवास भी उतने ही अहम हो सकते हैं जितने के आंखें। तो बेकन की ये थियरी बुनियादी तौर पर रद्द नहीं हुई, सिर्फ उसमें उन्होंने एक इजाफा कर दिया। इस नजरिए को टेक्निकली हम कहते हैं इंडक्टिविज्म, इंडक्शन। तो 17वीं सदी के अंदर साइंस के बारे में जो पहला दावा किया गया वो ये दावा किया गया कि साइंस बुनियादी तौर पर क्या है, इंडक्टिविस्ट। ये जो मैंने मॉडल, चाहे ये मॉडल ले लें चाहे ये मॉडल ले लें, ये दोनों मॉडल किस तरह के हैं, इंडक्टिविस्टिक मॉडल है। इंडक्शन, इंडक्शन क्या है, इंडक्शन बुनियादी तौर पर आपके के अकल का एक इजहार है, यानी कि आप अपनी अकल को दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक को हम कहते हैं इंडक्शन और एक को हम कहते हैं डिडक्शन। इंडक्शन डिडक्शन, हम डिडक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ इंडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इंडक्शन का मतलब यह है कि इंसान अगर किसी तजर्बे को बार बार तसलसल के साथ करता है तो उसकी अकल उसको ये मदद देती है या उसे ये समझने में मदद फराहम करती है उसकी अकल कि मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा। अगर एक तजर्बा आप तवातुर के साथ करते हैं, बार बार करते हैं, तो आपकी अकल आपको ये बताती है कि चूंकि ये माजी में होता रहा है लिहाजा मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा। ये आपकी सलाहियत इंडक्टिविस्टिक है, इसे हम कहते हैं इंडक्शन। हर बंदा ये काम करता है। मसलन ये है कि आप लोग अगर कहीं पे पढ़ते हैं और पहले दिन, या चले अभी अभी कोई पहले दिन हमारी ये सेशन 8 बजे, 8:30 बजे शुरू होना था, 8:30 बजे तो शुरू नहीं हुआ ना, हम देर से आए। दूसरे दिन भी हम देर से आए, तीसरे दिन भी हम देर से आए, लेकिन आप लोग कितने बजे पहुंचे आज, है भाई 8 बजे ही पहुंचे, तो आप लोगों ने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की। सही है, अगर आप इंडक्टिविस्ट होते तो आप कहते हैं भाई पहले दिन वहाब सूरी लेट हो गया, दूसरे दिन वहाब सूरी लेट हो गया, वहाब सूरी हमेशा लेट हो जाता है, लिहाजा आज आपको आना चाहिए था 9:45 बजे। इट विल बी अ रैशनल डिसीजन, इसे कहते हैं इंडक्शन। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार अगर एक चीज कंसिस्टेंटली होती है तो आप ये फैसला करते हैं अब हमेशा ऐसा ही होगा, ये कहलाता है इंडक्शन। अब अगर आप इस मॉडल को देखें तो इसमें भी यही हो रहा है। एक्सपेरिमेंटेशन में आप क्या कर रहे हैं, बार 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 एक काम को करके देख रहे हैं और आप कह रहे हैं हमेशा ऐसा ही हो रहा है, लिहाजा आपने जनरलाइजेशन कर दी, साइंटिफिक लॉ बना दिया, ऑल मेटल एक्सपेंड व्हेन हीट। आपने क्या किया, लोहे को लिया गर्म करके देखा फैल गया, सोने को लिया गर्म किया फैल गया, चांदी को गर्म किया वो फैल गया, सही है, मुख्तलिफ मेटल्स आपने गर्म किए और वो सब फैल गए। तो आपने कहा तमाम मेटल गर्म करने पर फैल जाते हैं, ऑल मेटल एक्सपेंड व्हेन हीट, सही है। इस तरह की जो अप्रोच होती है उसको हम बनाते हैं, उसका आर्ग्यूमेंट किस तरह बनाते हैं, उसका आर्ग्यूमेंट बताते हैं। फर्ज किया कि एक आदमी साइंटिफिक माइंड रखता है तो वो ऐसे ही कोई काम नहीं कहेगा, उसमें इंडक्शन करेगा, उसके बाद फैसला करेगा। तो आपने कव्वे देखे और आपने कहा कि कव्वे काले हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि कव्वे काले हैं। अब आपने ऑब्जर्वेशन बनाई, हाइपोथेसिस बनाया, शायद तमाम कव्वे, क्या तमाम कव्वे काले होते हैं। उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दी, आपने मुख्तलिफ किस्म के कव्वे देखने शुरू किए, आपने कराची में कव्वे देखे, आपने लाहौर में कव्वे देखे, आपने हिंदुस्तान में कव्वे देखे, फिर आपने कहा यार ये यहाँ पे जो कौमें आबाद हैं ये तो काली कौमें हैं, तो हम ऐसा कह रहे हैं यूरोप जाके देखते हैं शायद वहाँ गोरे कव्वे हों। वहाँ गए, वहाँ पे भी कव्वे काले ही थे, लोग तो गोरे हैं लेकिन कव्वे काले हैं। अफ्रीका आपने कहा वहां तो लोग ही काले होते हैं, फिर भी आपने कहा नहीं फिर भी जाके देखना चाहिए क्योंकि आप साइंटिफिक माइंड रखते हैं। लिहाजा आपने आर्ग्यूमेंट बनाया अ क्रो एट प्लेस X1 एट टाइम T1 वॉज ब्लैक, अ क्रो एट प्लेस X2 at time T2 was also black. A crow at place X3 at time T3 was also black. A crow at place XN at time TN was also black. Therefore, all crows are black. इसे कहते हैं इंडक्शन, ये एनालिसिस, ये तज्जिया इंडक्टिविस्टिक है। अब आप देखते हैं ना पाकिस्तान के अंदर सर्वे किया गया, इतने लोग जो है कबूतर की तरह बिहेव करते हैं, इतने लोग पाकिस्तान के अंदर खुदकुशी के रुझानात रखते हैं, इतने लोग ये करते हैं, इतने फीसद पाकिस्तानी ये करते हैं, इतने फीसद पाकिस्तानी ये करते हैं, ये सारे जो दावे होते हैं उसके पीछे जो मेथेडोलॉजी होती है वो ये होती है भाई, इंडक्टिविस्टिक मेथेडोलॉजी होती है। 50% पाकिस्तानियों का ये ख्याल है कि ख्वातीन पर जुल्म होता है, 100% पाकिस्तानियों का, 90-93% पाकिस्तानियों का ये ख्याल है, वगैरह वगैरह सुना होगा आपने, है रोजाना इस तरह के सर्वे आ रहे होते हैं। इस अप्रोच को हम कहते हैं इंडक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है, और ये आपकी अकल की सलाहियत है, हमेशा से इंसानों के पास रही है। इंडक्टिविस्टिक मॉडल ये कहता है कि साइंस इंडक्टिविस्टिक होती है। ये कब कहा लोगों ने, 18वीं सदी के अंदर, 18th century के अंदर जो साइंस की डेफिनेशन दी गई वो ये दी गई कि साइंस एक ऐसा इल्म है जो तजर्बे पे बेस करता है, और साइंस एक ऐसा इल्म है जो जिस उसूल के ऊपर खड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं वेरिफाइबिलिटी प्रिंसिपल। वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल। वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल का क्या मतलब है? साइंस जब भी कोई दावा करेगी उसे साबित करेगी। साइंस साबित करती है कैसे? इस तरह, एक चीज के ऊपर तवातुर के साथ तजर्बा करती है, तजर्बा करने के बाद यकीन के साथ जनरलाइजेशन करती है। ये जो जनरलाइजेशन या ये दावा जो होता है, इसके पीछे दलील क्या होती है? हमने साबित कर दिया। सुना आपने इस तरह का जुमला, जदीद तहकीक से साबित हो गया है, जदीद तहकीक से साबित हुआ। सेफ गार्ड ही बच्चों को बेहतरीन तहफ़ फराहम करता है। हाँ, जदीद तहकीक साबित हुआ कि सर्फ एक्सेल ही दाग निकालने वाला बेहतरीन पाउडर है, दाग निकाल देता है चाहे कपड़े सलामत रहे या ना रहे। सही है? तो जदीद तहकीक से साबित हुआ जो जुमला है ना, उसके पीछे जो है बुनियादी तौर पर जो उसूल है वो इंडक्टिविस्ट प्रिंसिपल है, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिफाइबिलिटी प्रिंसिपल। दूसरी चीज ये होती है कि इंडक्शन कहता था कि साइंस आपको यकीन देता है, जब आप तजर्बा कर लोगे, बार 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 तजर्बा कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? यकीन मिलेगा। कैसा यकीन है ये? कौन सा तयक्कुन है ये? इस यकीन को कहते हैं ऐनुल यकीन, देखकर यकीन होना। जब आपने देख लिया तो यकीन हो जाएगा ना आपको, ऐनुल यकीन। सही है? देख लिया तो अब तो यकीन आ ही जाएगा। आपको पता है हजरत बहलूल जो थे उनके पास वो कहीं बैठे हुए थे, तो हारून रशीद जो था अपनी बीवी के साथ वॉक कर रहा था, तो हजरत बहलूल जो है कहीं बैठे हुए थे और मिट्टी के घर बना रहे थे, मिट्टी के। तो हारून रशीद इज्जत तो बहुत करता है लेकिन उस वक्त तफरी के मूड में था, तो उसने कहा हजरत क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा, हजरत बहलूल ने कहा कि मैं घर बना रहा हूं। उसने कहा अच्छा, कहां बना रहे हैं ये घर? बोलने के जन्नत में घर बना रहा हूं, खरीदोगे? तो हारून रशीद हंसा कि बाबा जी का दिमाग सही काम नहीं कर रहा, जन्नत में घर बना। तो जो बीवी थी वो बड़ी मजहबी थी और हजरत बहलूल की इज्जत भी बहुत करती थी, उन्होंने कहा जी मैं खरीदूंगी। कितने का है? तो उन्होंने कहा 50,000 दिनार का है। 50,000 दिनार, तो जाहिर है वो तो खलीफा की बीवी थी, उसने कहा अच्छा 50,000 दिनार उसने दिए और घर खरीद लिया। उन्होंने 50,000 दिनार ले लिए और घर दे दिया, घर ले आई वो मिट्टी का घर। हारून रशीद रात में सोया तो उसने ख्वाब देखा कि जन्नत में वही घर जो मिट्टी का बना हुआ था वो बना हुआ है, उसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा हुआ है, दरवाजे पे उसकी बीवी का नाम भी लिखा हुआ है। तो हारून रशीद ने पूछा भाई ये घर किसका है? तो उन्होंने कहा कि ये फला फला का है, उसकी बीवी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि आज ही तो खरीदा है 50,000 दीनार का। हारून रशीद उठ गया, उस सुबह जो है फजर की नमाज पढ़कर सीधा भागा, मैं भी खरीद लूं भाई। तो वो घर बना रहे थे अपने बैठे में, तो उसने कहा कि हजरत क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जन्नत में घर बना रहा हूं और घर बनाते रहे। तो इसने कहा कि आप लगाएंगे कीमत तो मैं खरीदता हूं। तो वो खड़े रहे खड़े, उसने कहा कुछ जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि हजरत बेचेंगे नहीं? तो उन्होंने कहा भाई देखने के बाद नहीं बेचते, अब तो तुम देख के आ गए, हम ऐनुल यकीन पे यकीन नहीं रखते, हक्कुल यकीन पे यकीन रखते, देख कर यकीन नहीं करते, हक पर यकीन करते। सही है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब लोग बदतमीजी करते थे ना, बहुत ज्यादा तौहीन करते थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखते थे इस तरह कि अल्लाह मियां कोई मौजज़ा करे, تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ بار بار اوپر نہیں دیکھا کریں. یہ لوگ آپ کو بالکل اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اگر آپ ان کے سروں کے اوپر احد کے پہاڑ بھی کھڑے کر دیں یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے, کیونکہ تو آپ کو پہچانتے ہیں, آپ نے اپنی حجت تمام کی. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا نا وہی خدا کے ہونے پہ دلالت کر دیتا تھا. حق الیقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز ہیں, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دھوکہ نہیں دیا, نیور. اس کو ویسٹرن تھنکرز بھی اکنالج کرتے ہیں. سب سے زیادہ معجزے جنہوں نے کیے ہیں نا وہ حضرت موسیٰ نے کیے ہیں, 9 معجزے کیے ہیں حضرت موسیٰ. سب سے زیادہ دھوکہ حضرت موسیٰ کو دیا ہے ان کی امتیوں. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ پانی پھٹ جاؤ اس کے بیچ میں سے تم گزر جاؤ, تمہارے سامنے دشمن کو غرق کر دے, سرسریاں چھوڑ دے, خون کی بارش کر دے, اژدہا نکال دے. حق الیقین نہیں, عین الیقین تھا دیکھ کے, اس کے باوجود نہیں. بہرحال انڈکشن کہتا ہے ہم عین الیقین پہ یقین رکھتے ہیں, دیکھ کر یقین. تو ہماری قوم چاہتی ہے کہ اللہ میاں ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. ابے تم ہو کون, تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اللہ. نہیں یقین کرو, نہیں یقین کرو, بھاگو ادھر سے. اور آپ اپنے آپ کو جس طرح دیکھتے ہو کہ آپ صحیح دیکھ رہے ہو ایک دوسرے کو. میں ابھی گیا ہوا تھا جاپان, تو وہاں سے میں اپنے بچوں کے لیے ٹیلیسکوپ لے کے آیا, ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ, دو چیزیں لے کے. ٹیلیسکوپ جو بہت دور کی چیز دکھاتی ہے, اور مائکروسکوپ جو بہت چھوٹی, بہت بڑی بہت چھوٹی. اور بچوں کو آیا ہی نہیں وہ سیٹنگ کرنا, مجھے بھی نہیں آئی. وہ خیر اپنے لگے رہے, اس کے بعد ان کو مائکروسکوپ استعمال کرنا آ گیا. تو مائکروسکوپ جو ہے اس سے وہ چیزیں نکال کے رکھتے تھے, دیکھتے تھے. تو پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اللہ میاں نے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ مائکروسکوپک کیوں نہیں بنائی. مائکروسکوپک ہوتی, ہر چیز ہم دیکھ لیتے, چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ لیتے. تو میں نے کہا ہاں بیٹے یہ پتہ نہیں ہے اللہ میاں کی مرضی, آپ بتاؤ. دوسرے سے پوچھا, چھوٹا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ٹیلی ویژن دیکھ رہا. تو اس نے کہا کہ اللہ میاں نے ہماری آنکھیں مائکروسکوپک اس لیے نہیں بنائی کہ اگر ہماری آنکھیں مائکروسکوپک ہوتی تو ہم لوگوں کو چیزیں بہت گندی لگتی. کیوں؟ کیونکہ جب وہ مائکروسکوپ میں چیزیں دیکھتا ہے نا تو قریب سے اس کو گندی لگتی, ان کو گھنا. ایک دو بار انہوں نے الٹی بھی کر دی کہ یہ اتنا گندا. تو انہوں نے کہا اگر مائکروسکوپک ہوتی ہماری آنکھیں تو ہمارے دانتوں کے اندر جو مائکروبز ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے, آنکھوں کے اندر جو بیکٹیریا ہے وہ بھی دکھائی دیتے. سوچو آپ کی آنکھیں مائکروسکوپک ہیں اور دانتوں کے اندر ہزاروں قسم کے جرمز ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, لوگ باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے اور ان کو کیڑے نظر آ رہے ہیں. ملکہ حسن جو ہیں ان کی آنکھوں کے اندر کیڑے, ناک کے اندر کیڑے, منہ پہ کیڑے, ہر طرف کیڑے, آگے بھاگ رہے, آ رہے, جا رہے, ادھر ادھر نکل رہے, اندر باہر, آگے پیچھے, کیڑے گھوم رہے پورے جسم کے اوپر. آپ کو پتہ ہے آدمی کا جو پیر ہوتا ہے صاف ستھرے آدمی, پیر کے اوپر 200 قسم کی فنگس ہوتی ہے, 200 kinds of fungus صحت مند آدمی کے موجود ہوتی ہے. 200 قسم کی فنگس موجود ہے آپ کے پیروں پہ اس وقت. سوچیں اگر آپ سب ایک دوسرے کو مائکروسکوپ میں, سب چیخیں مارتے بھاگیں گے, سب. ایشوریا رائے کو دیکھ کے لوگ چیخیں مار رہے ہیں, سلمان خان کو دیکھ کے لوگ چیخیں مار رہے ہیں, سب چیخیں مار, چیخ چیخ کے مر جاتے کہ میرے اوپر اتنے کیڑے. یور باڈی از کورڈ ود اے بیکٹیریا, ایک بیکٹیریا ہوتا ہے پوری باڈی کو کور کرتا ہے, जो आपको धूप की रोशनी से बचाता है। धूप के अंदर एक रेडिएशन होती है अल्फा रेडिएशन, खाल को फाड़ के आपके जिस्म में घुस जाती है वो, तो उससे बचाने के लिए कुदरत ने आपके जिस्म के ऊपर एक बैक्टीरिया की लेयर रखता है जो आपको बचाती है सूरज की अल्फा रेडिएशन से। अब आप तसव्वुर करें एक ऐसा इंसान जिसके पैरों के ऊपर 200 किस्म की फंगस लगी हुई है, मुंह में कीड़े आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, आंखों में, कान में, नाक में, हर जगह, और उसके बावजूद अल्लाह कह रहा है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो मेरे जो छोटे बेटे है उसने कहा कि अल्लाह मियां को हम लोग कैसे नजर आते होंगे, कितने गंदे नजर आते होंगे, कितने गलीज नजर आते होंगे। अब अगर एक गलीज इंसान दूसरे गलीज इंसान के लिए उस गिलाजत को देखे बगैर खुदा को नाराज कर दे तो खुदा क्या सोचता होगा, इस तरह कहेंगे इस गलीज चीज के लिए ये काम कर रहा हूं मेरे से, मेरे सामने। तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है, आप देख के यकीन रखते हो लेकिन असल में आप देख नहीं सकते। आपने कभी अपने नाखून बढ़ते हुए देखे, अपने बाल बढ़ते हुए देखे, अपना कद बढ़ते हुए देखा, अपने सेल टूटते हुए देखें, ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ और आप कहते हो साइंस ने हमें साबित कर दिया है कि हम पहले तजर्बा करें। अरे तजर्बा कर रहे हो तुम, कौन सा तजर्बा कर रहे हो भाई, कौन सा तजर्बा देख रहे हो कि तुम कहो कि नहीं, रिलीजन भी इसी तरह साबित करे। तो इंडक्शन ने यह दावा किया था 18वीं सदी में कि हम वेरीफाई करते हैं फिर हम दावा करते हैं, वेरिफिकेशन हमने करके दिखा दी, ठीक है। इस तरह के इंडक्शन को हम कहते हैं सोफिस्टिकेटेड इंडक्टिविज्म, इंडक्टिविज्म है ये, सही है। तो 18वीं सदी में साइंस की डेफिनेशन क्या थी, साइंस इज इंडक्टिविज एंड द प्रिंसिपल इज वेरिफाइबिलिटी प्रिंसिपल, हम पहले साबित करेंगे फिर दावा करेंगे। 19वीं सदी में एक दूसरा किस्म का फलसफा डेवलप हुआ, फलसफी जो थे उन्होंने जब साइंटिफिक मेथड को समझा, इंडक्शन को देखा, इंडक्शन को समझा, तो उन्होंने कहा भाई इंडक्शन के अंदर तो बड़ा खतरनाक किस्म का मसला है, इंडक्शन के अंदर एक सीरियस प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसे कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन क्या है, इस आर्ग्यूमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है, आप लोग इंडक्शन करते हैं या नहीं है? मसलन आपने एक होटल में खाना खाया बीमार हो गए, उसी होटल में दोबारा खाना खाया फिर बीमार हो गए, तीसरी बार खाया फिर बीमार हो गए, चौथी बार खाया फिर बीमार हो गए, तो जब पांचवी बार आपका दोस्त आपको किसी उसी होटल में ले जा रहा है तो आप कहें इस होटल में खाना खाने से आदमी बीमार हो जाता है, ये इंडक्शन है, हैं? आपके अब्बा, आपने अपने अब्बा से पहली बार सच बोला फेंटी लग गई, दूसरी बार सच बोला फिर फेंटी लग गई, तीसरी बार सच बोला फिर फेंटी लग गई, चौथी बार सच बोला फिर, पांचवी बार आप झूठ बोल देंगे, हमेशा सच बोलने से फेंटी लगती है, लिहाजा झूठ बोल देना चाहिए कम से कम अब्बा के सामने। ये जो इंडक्शन है ना ये एवरी डेनेस में आप कर रहे होते हैं, लेकिन साइंटिफिक इंडक्शन उस तरह जैसे मैंने बताया बेकन ऑर्गेनाइज लेवल पर की जाती है। इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि आपने जो तजर्बात किए हैं वो कुछ तजर्बात किए हैं सम, और जो दावा आपने किया है वो ऑल के बारे में किया है, यह मसला इसका। आफ्टर हैविंग फ्यू एक्सपीरियंसेस यू आर क्लेमिंग फॉर ऑल, मसला क्या है कि आपने कुछ तजर्बात किए और आपने सबके बारे में राय कायम कर दी। जैसे ये जो भाई कव्वे के शौकीन थे, फर्ज करें कि ये इंडक्टिविस्ट थे और कव्वे देखते फिरे ये, सही है, और इन्होंने कहा कि मैं इस सच्चाई को साबित करूंगा, साबित करूंगा इस सच्चाई को कि कव्वे काले होते हैं नहीं, और पूरी दिन जिंदगी पूरी दुनिया में ये घूमते रहे और हर जगह पहुंचते रहे कि कव्वे काले होते हैं या नहीं होते, कव्वे काले होते हैं नहीं होते, अपना डेटा जो है ये बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए और इन्होंने करोड़ों कब्बे दुनिया के देखे, सही है। और 30 साल गुजर गए और ये 30 साल की उम्र में इन्होंने कब्बे देखने का अमल शुरू किया था। 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद पाकिस्तान वापस आए और इनकी बड़ी तारीफें हुई, इंटरव्यू हुआ कि माशाल्लाह पूरी जिंदगी आपने एक फजूल एक्टिविटी में लगाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इतना फजूल काम करने के बाद। और इन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया और कहा मैं इस पर कभी फख्र नहीं किया। और उसके बाद इंटरव्यू दिया उन्होंने, और इंटरव्यू देने के बाद इन्होंने कहा अब मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि तमाम कव्वे काले होते। लेकिन ये बराबर से एक बच्चा एक कव्वा लेके आया जो सफेद था, क्यों? क्योंकि उन्होंने तमाम कव्वे एक्सपीरियंस नहीं किए, 1 करोड़ कव्वे एक्सपीरियंस किए, 20 करोड़ कव्वे एक्सपीरियंस, तमाम कव्वे एक्सपीरियंस नहीं किए। क्यों? क्योंकि इंसान का तजर्बा महदूद और उसका दावा लामहदूद होता है, लिहाजा आप कुल को तजर्बा कर ही नहीं सकते, आपका तजर्बा हमेशा जुजवी होगा और दावा कुल्ली होगा। Having particular experiences you are claiming for all. इसका मतलब है कभी भी आपका दावा गलत हो सकता है। मसलन इसको और प्रैक्टिकल, क्या आप लोगों का ख्याल, आप लोगों के ख्याल में साइंटिफिकली मुझे बताइए, साइंटिफिकली तजर्बे की रोशनी में इंडक्टिविस्टिक होकर, क्या आप लोग मर जाएंगे या नहीं, मरेंगे आप लोग या नहीं है? कितने लोगों का ख्याल है हाँ मर जाएंगे, या कोई ऐसा भाई जो कहे नहीं मैं नहीं मरूंगा? नहीं तो ये किस बुनियाद पे आप लोग कह रहे हैं, तो नॉन साइंटिफिक एटीट्यूड है। हाँ है, नहीं नहीं हम अभी पैगंबर की बात नहीं कर, अभी हम लोगों की बात, अपनी बात, हम लोग मरेंगे या नहीं? अच्छा मैं मरूंगा या नहीं आपके ख्याल में? नहीं तो ये तो गलत बात है, कोई साइंटिफिक आपका कौन सा वेरिफिकेशन है? आप कहें देखें जी आप आर्ग्यूमेंट किस तरह बनाएंगे, आप आर्ग्यूमेंट बनाएंगे देखें बाप साहब, आर्ग्यूमेंट ये है अ मैन एट प्लेस एक्स वन एट टाइम टी वन वॉज मॉर्टल, a man at place x2 at time t2 was also mortal, a man at place x3 at time t3 was also mortal, फिर हमने बहुत और बहुत सारे experiments किए और फिर हमने कहा a man at place xn at time tn was also mortal, therefore all men are mortal। आप कहेंगे देखें जी हमने बहुत सारे इंसानों को मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ उम्रों में मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ जगहों में मरते हुए देखा है, और उन सब में जो कदर मुश्तरक थी वो काले भी थे गोरे भी थे औरतें भी थी मर्द भी थे अमीर भी थे गरीब भी थे बच्चे भी थे बूढ़े भी थे जवान भी थे, सब मर जाते हैं, लिहाजा हम सब भी मर जाएंगे। लेकिन ये जितने भी लोग मरे हैं इनमें एक कदर मुश्तरक है, ये माजी की बात है। हो सकता है आज आप में से कोई ऐसा आदमी हो जो कभी ना मरे, हो सकता है आप ही ऐसे इंसान हो जो कभी ना मरो, तो आप कहें नहीं मैं साबित कर सकता हूं, वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल, आपने कहा सर मैं साबित करता हूं आपको, लिहाजा आप उठे और आपने हम सबको मार डाला साबित करने के लिए, हमें मारना नहीं चाहते साबित करने के लिए, इल्म की खातिर, साइंटिफिक माइंड है आपका, साबित करने के चक्कर में आपने कहा एक गोली मार, अरे क्या मर गए, अरे ये भी सब मर गए। तो फिर मेरे से कहा अब तो यकीन आ गया आपको, देखें सब मर गए, तो मैं अगर खबीस टाइप कहूंगा मैं कहूंगा भाई ये जो बाहर इतने सारे घूम रहे हैं हो सकता है ये कभी ना मरे, अमरीका के लोग कभी ना मरे, अल्लाह ने उनको ताकत भी दी खूबसूरती भी दी सब कुछ दिया, हो सकता है वो लोग कभी मरते ही ना हो। तो आपने कहा मैं साबित करता हूं आपको, पूरी दुनिया के इंसानों को मार दिया उसने, फर्ज कर लेते, और उनके डेटा बढ़ता जा रहा है, अमैन एट प्लेस X3 एट टाइम T3 पूरे 5 अरब इंसान मार दिए, सिर्फ मैं बच गया और वो बच गया। मैंने कहा सर अब तो साबित हो गया, तो मैंने कहा भाई अभी भी हो सकता है मैं कभी ना मरूं, मुझे भी मार दिया उसने, तो कंप्यूटर पे क्या ये आ जाएगा ऑल मैन आर मॉडल? तो लॉजिकली, प्रैक्टिकल नहीं है, लॉजिकली अभी वो जिंदा है, हो सकता है वो ही कभी ना मरे, तो उसे क्या करना चाहिए, अपने आप को भी मार के देखना चाहिए। तो अपने जहर खा ले और मरते मरते कंप्यूटर के एंटर के ऊपर उंगली दबा दे और ऑल मैन आर मॉर्टल। लेकिन सवाल ये कि साबित किसके ऊपर हुआ, कोई है ही नहीं सबूत को देखने वाला, देर इज नो वन हु कैन एक्नॉलेज दिस वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि इंडक्टिविज्म में जब भी आप तजर्बा करेंगे हमेशा वो महदूद होगा, दावा ला महदूद होगा, लिहाजा हमेशा ये खतरा होगा कि आपकी इंडक्शन गलत हो जाए। आपने तजर्बा किया है जुज का और दावा आपने किया है कुल का, लिहाजा कुल में हो सकता है कोई ऐसा जुज निकल आए जो आपके इस तजर्बे की नफी कर दे। बात समझ में आ रही है? इसे फलसफियाना तौर पे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। ये प्रॉब्लम जब पैदा हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई आप तो कह रहे हैं कि साइंस हर चीज को साबित करती है, साइंस तो हर चीज को साबित नहीं कर सकती, साइंस जो सच्चाई आपको पेश करती है वो यकीनी सच्चाई नहीं होती, इम्कानी सच्चाई होती है। साइंस कैन नॉट प्रोवाइड यू नेसेसरी ट्रूथ, साइंस कैन प्रोवाइड यू ट्रूथ बट प्रोबेबल ट्रूथ, इट्स प्रोबेबली ट्रू, हाईली प्रोबेबल है कि ऐसा हो कि हम सब मर जाएं, लेकिन यह भी मुमकिन है कि हम मरे ही नहीं, समझे? शैतान मर जाएगा या नहीं? आप लोगों के मरने से पहले शैतान का इंतकाल होगा या नहीं? तो शैतान क्यों नहीं मरता? आग से पैदा होने वाले मर जाते हैं। शैतान ने मोहलत मांगी है कि मुझे, मैं चाहता हूं कि मैं ना मरूं। शैतान ने कहा कि भाई अब मैं जो है ना इस इंसान को नहीं छोड़ूंगा, तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है मैं तुम्हें उम्र दे रहा हूं। तो शैतान ने कहा मैं सामने से भी हमला करूंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, दाएं से भी हमला करूंगा, बाएं से भी हमला, चारों तरफ से इस पर हमला करूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा मैं तुम्हें उम्र भी दे रहा हूं और चारों सिमत भी दे रहा हूं, चारों रास्ते तुम्हारे लिए खोल रहा हूं, चारों तरफ से हमला करो। लेकिन दो अब तो मुतमईन हो सका, हाँ मैं मुतमईन हूं। अल्लाह ने कहा दो रास्ते तुम्हें दिखाई नहीं दिए, वो मैंने अपने लिए छोड़ दिए। जब ये झुक जाएगा नीचे चला जाएगा इसे बचा लूंगा, अगर ये ऊपर दे गया तो भी निकाल लूंगा। तो बताने का मतलब ये कि हो सकता है अल्लाह मियां हमारी शैतानी खसूसियात को देखते हुए भाई इनको भी शैतानी की उम्र दो। तो प्रोबेबल ट्रूथ है, फेल हो सकता है। इंडक्शन के इस प्रॉब्लम के बाद इंडक्टिविज्म के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ उसके नतीजे में लोगों ने कहा साइंस की ये डेफिनेशन ठीक नहीं है, दैट साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन, वो साइंस इज इंडक्टिविस्ट, वी नीड अनदर थियरी ऑफ साइंस। तो उसके लिए इसका जवाब दिया एक दूसरे फलसफी ने, उसका नाम है कार्ल पॉपर। पॉपर ने आके ये कहा कि देखो भाई तजर्बा जो है वो कुल का नहीं हो सकता, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस द होल, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस द पार्ट। कुल का तजर्बा नहीं किया जा सकता, जुज का तजर्बा किया जा सकता है। तो यकीन की बुनियाद पर कंफर्मेशन नहीं की जा सकती, यकीन के साथ किसी चीज को वेरीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन यकीन के साथ किसी चीज को फॉल्सिफाई किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन इज थियरी ऑफ साइंस जनरेट की किसने? पॉपर ने। पॉपर ने कहा कि साइंस वेरीफाई नहीं करती, साइंस फॉल्सिफाई करती है। फॉल्सिफिकेशन का क्या मतलब है? साइंस सच्चाई को साबित नहीं करती, साइंस सच्चाइयों को झूठा साबित करती है, समझे भाई? साइंस सच्चाइयों को साबित नहीं करती, बल्कि साइंस सच्चाइयों को झूठा साबित करती है। अगर किसी को झूठा साबित कर दिया जाए तो फिर हम उस थियरी को रद्द कर देते हैं और फिर उस थियरी को उस वक्त तक सच्चा मानते हैं जब तक वो गलत साबित ना हो जाए तजर्बे की रोशनी में। तो तजर्बे की रोशनी में साबित नहीं किया जा सकता किसी सच्चाई को, गलत साबित किया जा सकता है, वेरीफाई नहीं किया जा सकता, फॉल्सिफाई किया जा सकता है। मसलन ये कि अगर कोई आदमी कहे तमाम कव्वे काले होते हैं तो उसके लिए तमाम कव्वों का तजर्बा किए बगैर ये दावा नहीं किया जा सकता। लिहाजा अगर कोई आदमी कहेगा तमाम कव्वे काले होते हैं तो ये सच्चाई गलत साबित हो सकती है। एक कव्वा चाहिए आपको, सफेद कव्वा या भूरा कव्वा या ब्लू कव्वा जो के काला ना हो, एक कव्वा अगर आपको मिला तो यह पूरी की पूरी सच्चाई जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। लिहाजा पॉपर कहता है बजाय ये कि आप ये कहें कि तमाम कव्वे काले होते हैं, आप एक सफेद कव्वा तलाश कर लें और आप कहें तमाम कव्वे काले नहीं होते। अगर आप ये कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यकीन के साथ, ये तो नहीं कह सकते कि तमाम कव्वे काले होते हैं, लेकिन यकीन के साथ आप ये कह सकते हैं तमाम कव्वे काले नहीं होते। और इस यकीन के लिए आपको सिर्फ एक तजर्बे की जरूरत है। आप यकीन के साथ ये तो नहीं कह सकते कि तमाम इंसान मर जाते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा इंसान तलाश करना पड़ेगा जो कभी ना मरे। जब तक कि आपको ऐसा इंसान नहीं मिलता जो कभी नहीं मरा हो, तब तक आप इस चीज को सच्चा माने कि इंसान मर जाएंगे। लेकिन जिस दिन कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसके बारे में पता चले कि वो 27,000 साल से जिंदा है, आप लोगों ने देखा कोई ऐसा हीरो जो मरता ना हो? जितने भी सुपरमैन है मरते नहीं है ना, जब हम बच्चे थे तब भी सुपरमैन था, फिर हम बूढ़े हो गए उस वक्त तक सुपरमैन आए जा रहे हैं, सुपरमैन नहीं मरता। इस तस्वीर को हम कहते हैं ऊबर मैंश, जर्मन वर्ड है ऊबर सुपर, मैंश कहते हैं मैन को, ऊबर मैंश नहीं मरता। तो हीरोज नहीं मरते हैं आपके ख्यालात के अंदर। फर्ज करें एक ऐसा आदमी आपको मिल जाए जो 27,000 साल से अभी तक जवान का जवान हो, तो आप कहें अच्छा भाई ये हमें एक आदमी मिल गया 27,000 साल से नहीं मरा, तो आप कहेंगे तमाम एक आदमी हमें ऐसा मिल गया है जो कभी नहीं मरता। अमेरिकन जो हैं इसी तरह के आदमी की तलाश के लिए जो है जेलों के अंदर लोगों को डाल के रखते हैं। आपको पता है अमेरिका में जेल जब भेजते हैं तो कितने कितने दिन की सजा देते हैं? ज्यादा ज्यादा पाकिस्तान में कितने दिन के लिए जेल भेजते हैं? उम्र कैद जो होती है कितनी की? 14 साल। 14 साल में दिन भी होता है और रात भी होता है, 7 साल बंद रहता है वो, 7 साल बाद बाहर आ जाता है। अमरीका के अंदर होता है 233 साल, 233 साल के लिए बंद कर दिया। हो सकता है वही इंसान हो जो कभी ना मरे, 233 साल के लिए सजा देने का क्या मतलब है भाई? फिर उन्होंने क्या जिद्दोजहद की, उन्होंने केस सूट फाइल की, ये किया वो किया, तो उन्होंने कहा हाँ ये सजा में कमी कर रहे हैं, 230 साल, 3 साल कम कर दिए। अबे दो तो मर ही जाएगा, 50 साल का तो अभी है वो, 233 साल का क्या मतलब है? आप ये कहो कि तुझे अब कभी बाहर नहीं निकलना, सही है? तो ये मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ भाई, सच में नहीं समझना कि वो सच कभी ना मरने वाले आदमी के लिए इतने दिन के लिए जेल में डाला जाता है। नहीं 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 मैं आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो फिजिक्स के अंदर आपने ये कहा होगा कि मादा गर्म करने पे फैल जाता है. डू यू एग्री विद दिस? मादा फैल जाता है नहीं? लेकिन हर मादा नहीं फैलता भाई, आपको पता है बात. एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, पानी का बेकायदा फैलाव रूल है ये. यानी कि हर चीज फैलती है गर्म करने से एक्सेप्ट वाटर. पानी जो होता है जब जम जाता है तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक अगर उसके उसको हीट दी जाए, यानी कि 0 डिग्री पर है कोई चीज, उसको आपने गर्म किया 4 डिग्री तक, तो उसके नतीजे में वो फैलेगा नहीं, 4 डिग्री तक वो मजीद सुकड़ेगा. आप उसको गर्मी दोगे और सुकड़ेगा. इसे कहते हैं इनैमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. ये जब तक के तजर्बा नहीं हुआ था उस वक्त तक लोग समझते थे ऑल सब्सटेंस एक्सपेंड व्हेन हीट. जब पानी का के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला पानी के साथ ऐसा नहीं होता. अगर पानी के अंदर ऐसा ना हो, बेकायदा ना हो, तो दुनिया में कोई समंदरी जानदार जिंदा ना रहे. क्यों? क्योंकि सर्दी में पूरा समंदर नहीं जमता, सिर्फ अपर लेयर जमती है. नीचे का पानी क्यों नहीं जमता? नीचे का पानी इसलिए नहीं जमता कि ऊपर की लेयर पर 4 डिग्री जब सूरज की रोशनी पड़ती है वो और वो हो जाता है हार्ड. नीचे तक वो पहुंचता नहीं है, इसे नीचे पानी फ्लो करता रहता है. समझे भाई? तो और बहुत सारी मैं एग्जाम्पल है, मैं दरअसल इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं करना, मैं साइंसेस का आदमी हूं. तो हर दाग है इस दिल में बजुस दाग नदामत, ये बता दू. फिजिक्स पढ़ी है मैंने बहुत अच्छी खासी, ठीक है, और मैं फिलोसफी ऑफ साइंस पढ़ाता हूँ PhD के स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं इसको टेक्निकल नहीं करना चाह रहा अभी. तो मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो आसानी से अंडरस्टैंड. अभी हमारा मकसद इंडक्शन पढ़ाना नहीं है, हमें ये बताना है कि हमारा जो मजहबी जहन है वो साइंस के ऊपर जब इन्हिसार करता है तो साइंस के जो बड़े लोग हैं वो साइंस के बारे में जो बता रहे हैं वो आपके जहन में क्लियर हो. मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस को इस्तेमाल नहीं करो, बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन बेजा तवक्कुआत वाबस्ता ना करें, नाजायज तवक्कुआत वाबस्ता ना करें. किसी चीज पे जुल्म करने का मतलब यह है उसको उसके मकाम से हटा दो. अल्लाह ताला ये कहता है कि भाई जो आदमी शिर्क करता है ना वो मेरे पे जुल्म करता है. जुल्म क्यों करता है? क्योंकि मुझे मेरे मकाम से हटाया, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा. किसी ने अगर शिर्क किया उसको मैं नहीं छोड़ूंगा. क्यों नहीं छोड़ूंगा? मैंने ही उसे क्रिएट किया और कह रहा है मैं ही नहीं हूं, उसको नहीं छोड़ूंगा. क्यों? क्योंकि वो जुल्म करता है. उनको अल्लाह मियां कहता है जो शिर्क करता है वो जालिमीन है, जुल्म करता है. किस पे? मेरे पे जुल्म करता है. सही है. इसी तरह साइंस पे भी ये जुल्म है कि हम कहें साइंस जो है वो खुदा को साबित करके दिखाए. भाई वो साइंस साबित कर ही नहीं सकते, खुदा क्या कव्वे को साबित नहीं कर सकती वो. तो पॉपर ये बता रहा है कि साइंस साबित नहीं करती, गलत साबित करती है. तो फॉल्सिफिकेशन ये कहता है कि दुनिया में हर सच्चाई को उस वक्त तक हम सच्चाई मानेंगे जब साइंस तजर्बात की रोशनी में उसे गलत ना साबित कर दे. जब साइंस उसे गलत साबित कर देगी हम उसे रद्द कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे. बात समझ में आ रही है? कोई थियरी अगर गलत साबित हो गई तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे. मसलन ये कि कॉपरनिकस, टॉलमी ये कहता था कि जमीन का मरकज व महवर, जमीन कायनात का मरकज व महवर है. इसे हम कहते हैं जियोसेंट्रिक थियरी, जियोसेंट्रिक थियरी, ठीक है. फिर बाद में ये साबित हुआ कि जमीन तो खुद सूरज की गिर्द गर्दिश कर रही है, इसका मतलब है ये गलत साबित हो गया. अगर गलत साबित हो गया तो हमने जियोसेंट्रिक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को मान लिया. अभी हम ये समझते हैं कि सूरज हरकत नहीं कर रहा, जमीन उसके गिर्द हरकत कर रही है. फर्ज किया कल को ये पता चले कि नहीं सूरज भी हरकत कर रहा है तो हम इसको भी रद्द कर देंगे. तो हमारी कमिटमेंट किसी सच्चाई के साथ नहीं है. हर वो चीज को हम सच्चा मानेंगे उस वक्त तक जब तक तजर्बे की रोशनी में वो गलत साबित ना हो जाए. अगर वो गलत साबित हो जाएगी उसको हम रद्द कर देंगे. तो साइंस जो है वो आगे बढ़ती है सच्चाइयों को रद्द करके. तरदीद हक के नतीजे में साइंस आगे बढ़ती है. साइंस इज द फॉल्सिफिकेशन ऑफ द ट्रूथ. साइंस क्या है? सच्चाइयों की नफी करने का एक निजाम है। अब अगर पॉपर की इस यानी कि तसव्वुर को हम ले लें कि साइंस जो है वो सच्चाई की नफी करती है, तो इसका मतलब है आज जिसे साइंस ट्रू मानती है, पॉपर कहता है कि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा के लिए सच हो। आज के लिए सच है उस वक्त तक जब तक तजर्बे की रोशनी में ये गलत साबित ना हो जाए। अगर तजर्बे की रोशनी में ये गलत साबित हो गई तो हम इसे रद्द कर देंगे। जैसे आज हम ये समझते हैं इंसान की डेथ वाकई हो जाती है और वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, सही है। कल को साइंस एक ऐसा इंसान डेवलप कर ले जो मरने के बाद जिंदा हो जाए। आपको पता है डेथ एडवेंचरर्स होते हैं, डेथ एडवेंचरर्स के बारे में जानते हैं आप लोग? यूरोप और अमेरिका में ये लोग होते हैं जो डेथ एडवेंचरर्स कहलाते हैं। ये ऐसी मेडिसिन खाते हैं या ऐसी चीज खाते हैं जिसके नतीजे में डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। उसके बाद एक दो मेडिसिन ऐसी हैं जो डायरेक्टली दिल के अंदर इंजेक्ट करते हैं और प्रेशर डालते हैं, बंदा दोबारा खड़ा हो जाता, जिंदा हो जाता है। कंफर्म डेथ के बाद दोबारा, फिर वो कहते हैं क्या तजर्बा किया कि हम मरकर दोबारा जिंदा हो सकते हैं या नहीं। इस पे इस तरह के लोगों को हम कहते हैं डेथ एडवेंचरर्स। ये बाज़ औक़ात तजर्बे तजर्बे मर भी जाते हैं, सही है, इसलिए इलीगल है, लेकिन करते हैं लोग। इनको हम थ्रिल सीकर्स होते हैं, वो ये करते हैं कि हम मर रहे हैं फिर दोबारा जिंदा होंगे। मर के जिंदा होना, फर्ज करें कि साइंस में के जरिए साबित हो जाए कि मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकते हैं, और तो साइंस इस सच्चाई से रुजू कर लेगी कि इंसान मरता है। अब फर्ज किया एक आदमी कहे साइंस ने साबित कर दिया इंसान मर जाता है, तो हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कहा है कुल्लू नफ्सन जायकतुल मौत। हाँ, ये देखें साइंस ने भी साबित किया। अबे साइंस ने साबित कर दिया, साइंस इसको साबित वाबित नहीं कर रही, साइंस ने अभी इसे माना हुआ है। जब ये गलत साबित हुआ इसको रद्द कर देगी और कहेगी हम वो लोग हैं जो मौत का मजा नहीं चखेंगे कभी भी। जेनेटिक इंजीनियरिंग यही कोशिश कर रही है, सही है। तो फॉल्सिफिकेशनिस्ट ये कहते हैं कि साइंस बिगेंस विद, साइंस डज नॉट बिगेन विद वेरिफिकेशन, साइंस बिगेंस विद फॉल्सिफिकेशन। थियरी को रद्द कर दो अगर वो तजर्बे की रोशनी में गलत साबित हो जाए। मसलन गिजाइयत आपको मिलती है अनाज खाकर, सही है। तो अगर कभी आप कोई अनाज खाएं लेकिन उसके नतीजे में आप की मौत वाकई हो जाए, तो क्या आप अनाज खाना छोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू द फॉल्सिफिकेशनिस्ट थ्योरी? यानी कि ऑल वीट प्रोवाइड नरिशमेंट, ये एक दावा है, सही है। अब फॉल्सिफिकेशनिस्ट कहते हैं अगर कोई तजर्बा थ्योरी के खिलाफ हो जाए तो फिर हम उस थ्योरी को रद्द कर देंगे। हैं, आपने क्या किया, आपने गेहूं लिया उसको पीसा और उसको खाया, लेकिन खाने के बाद लोग मर गए, तो तजर्बा क्या हो गया? तजर्बा ये हो गया कि अनाज खाने से बजाय इंसान को नरिशमेंट मिलती, लोग मर गए। तो क्या आप ये दावा करेंगे कि गेहूं खाने से लोग मर जाते हैं? हैं भाई, फॉल्सिफिकेशनिस्ट कहते हैं कि देखो भाई, अगर तुम्हारे सामने कोई नजरिया कोई थियरी गलत साबित हो जाए, फॉल्सिफाई हो जाए, तो यक्सर उसको उठा के नहीं फेंका जाता, बल्कि थियरी को बचाने के लिए मॉडिफिकेशन की जाती है। मॉडिफिकेशन दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं एडहॉक मॉडिफिकेशन और एक को हम कहते हैं साइंटिफिक मॉडिफिकेशन। एडहॉक मॉडिफिकेशन क्या है? एडहॉक मॉडिफिकेशन ये है कि गेहूं लोगों ने खाया और मर गए, तो अब ये तो नहीं हो सकता ना पूरी दुनिया में जो रोजाना लोग रोटियां खा रहे हैं वो सब रोटियां खाना छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता। आपको थियोरी को डबल चेक करना पड़ेगा, तो आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। मॉडिफिकेशन करने का मतलब ये है कि आपको साइंटिफिकली ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि गेहूं खाने से लोग मर गए हैं, और आपको ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप लोग गेहूं खाते भी रहे, क्योंकि लोग सदियों से गेहूं खा रहे हैं। तो अब मॉडिफिकेशन ये है कि एक आदमी मॉडिफिकेशन ये करे कि भाई ये देखना पड़ेगा कि वो गेहूं जो है कहां पैदा हुआ। फर्ज किया वो गेहूं पैदा हुआ है मीरपुर खास के एक खेत में, तो आपने एक थियरी बनाई तमाम गेहूं नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं सिवाय उस गेहूं के जो मीरपुर खास में बनता है। ये एडहॉक मॉडिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। कोई साइंटिफिक बेसिस क्यों नहीं है? इस पर कोई एक्सपेरिमेंटेशन आपने की नहीं। लोग ये पूछेंगे ना भाई मीरपुर खास के अंदर ऐसा क्या हो गया कि मीरपुर खास का गेहूं आप क्यों ना खाएं, तो कहेंगे नहीं इसलिए कि मीरपुर खास का गेहूं खाने की वजह से लोग मर गए, लिहाजा मीरपुर खास का गेहूं नहीं खाना चाहिए। तो पॉपर कहता है कि भाई आपको साइंटिफिक मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। साइंटिफिक मॉडिफिकेशन ये करनी पड़ेगी, साइंटिफिक मॉडिफिकेशन एक ऐसी मॉडिफिकेशन होती है जिसके नतीजे में हम थियोरी को भी बचा लेते हैं और मजीद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की बुनियादें खुल जाती हैं। आप ये कहें कि हर गेहूं नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सिवाय उस गेहूं के जिस गेहूं के अंदर फंगस लगी हुई हो। ये जो लोग मरे हैं गेहूं खाने से, गेहूं की वजह से नहीं मरे, गेहूं के अंदर फंगस लगी हुई थी उसकी वजह से मरे हैं। तो गेहूं की वजह से लोग नहीं मरते बल्कि फंगस की वजह से मरते हैं, लिहाजा फंगस से बचाएं गेहूं को। ये आपने एक साइंटिफिक मॉडिफिकेशन की, आपने थियरी भी बचा ली और मॉडिफिकेशन भी की। तो साइंस के अंदर आप चीजों को रद्द करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि जैसे ही कोई एक एग्जाम्पल आया आपने पूरी थियरी उठा के रद्द कर दी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि उसको आप बचाने की कोशिश करेंगे, बचाने के बावजूद भी अगर वो थियरी नहीं बच सकी तो फिर हम उसको रद्द कर देंगे। तो फॉल्सिफिकेशनिज्म जो था वो 19वीं सदी के अवाखिर तक सबसे डिफाइनिंग नेचर थी साइंस की, कि साइंस डज नॉट बिगिन विद ऑब्जर्वेशन, साइंस बिगिंस विद थियरी, एंड साइंस डज नॉट फॉलो द वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल, साइंस फॉलो अ फॉल्सिफाइबिलिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब यह है कि फॉल्सिफिकेशनिस्ट ये कहते थे कि साइंस जो है सच साबित नहीं करती, गलत को साबित करती है। 19वीं सदी के खत्म होते होते कुछ नए थियरिस्ट आ गए, इनके इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि देखो भाई साइंस जो है वो एक ऐसा इल्म है, साइंसी नजरियात ऐसे नजरियात होते हैं जिनको यकीनी तौर पर ना तो सही साबित किया जा सकता है ना तजर्बे की रोशनी में इनको गलत साबित किया जा सकता है। Why? Because साइंटिफिक थियरीज आर नॉट थियरीज, साइंटिफिक थियरीज आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। ये किसने कहा था? ये कहा था एक आदमी है, उसका नाम है कून और लैकटोश। कून, थॉमस कून और लैकटोश, लैकटोश एंड कून, ये दोनों स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि देखो भाई फॉल्सिफिकेशनिस्ट कहते हैं कि साइंस के अंदर जब थियरी गलत साबित हो जाती है तो उस थियरी को हम उठा के फेंक देते हैं, और फिर हम एक नई थियरी को रद्द करने के लिए निकल खड़े होते हैं, फिर उसको भी हम रद्द कर देते हैं, फिर एक और थियरी को रद्द करने के लिए हम निकल खड़े होते हैं। कून और लैकेटोश ही कहते हैं कि ये जो तुम्हारा दावा है साइंस की तारीख से कंसिस्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक थियोरीज हैं जिनको हमने साइंस की बुनियाद पर फॉल्सिफाई किया, यानी कि उसको गलत साबित कर दिया, गलत साबित हो गई। वो गलत साबित होने के बाद हमने कहा ये झूठ है, झूठा साइंटिफिक दावा है, उसको लोग भूल भाल गए। 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद, 400 साल बाद वही साइंटिफिक थियरी दोबारा सही साबित हो गई। इसका क्या मतलब है? साइंटिफिक थियरीज ना तो मरती हैं ना फॉल्सिफाई होती हैं, ना वो वेरीफाई होती हैं ना फॉल्सिफाई होती हैं, क्योंकि थियरी को फॉल्सिफाई किया जा सकता है या थियरी को रद्द किया जा सकता है, स्ट्रक्चर को वेरीफाई किया जा सकता है ना फॉल्सिफाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, आपको पता है कि लाइट जो है वो कैसे सफर करती है? लाइट जो है वो किस तरह सफर करती है? हैं? नहीं, जिस तरह हमारे यहां लोग कहते हैं कि भाई आप कौन सा इस्लाम पे यकीन रखते हैं, आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, हाँ ये हमारे यहां लोग कहते हैं ना, तो हमारे यहां लोग कहते हैं इस्लाम एक होना चाहिए। तो फिर लाइट को भी एक ही तरह होना चाहिए ना भाई, लाइट के बारे में एक ही थियरी होनी चाहिए। तो लाइट की एक थियरी थी पहले कि लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इसे कहते हैं वेव थियरी ऑफ लाइट। और मैटर किस तरह सफर करता है? मैटर जो होता है पार्टिकल की फॉर्म में होता है, पैक एटम्स की सूरत। इसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी में और मैटर में क्या फर्क है? एनर्जी कॉन्टिन्यूस होगी और मैटर डिस्टिंक्ट होगा। मैटर एक दूसरे से अलग होगा, एनर्जी एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी। तो जुड़ी हुई होने की वजह से वो वेव की सूरत में सफर करती है। कुछ लोगों ने कहा नहीं वो तो स्ट्रेट लाइन होती है, तो लोगों ने कहा कि दरअसल वेव तो होती है मगर बहुत छोटी वेवलेंथ होती है, इसलिए तुम्हें वो लकीर लगती है, रेज लगती है, लेकिन वो वेव्स विद अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स टू यू लाइक स्ट्रेट लाइन। ये कौन सी थियरी थी? वेव थियरी। अब ये जो वेव थियरी ऑफ लाइट थी, इसकी रोशनी में लाइट के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते थे क्लेम होते थे, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट का जो प्रोसेस था वो एक्सप्लेन होता था। पोलराइजेशन समझते हैं आप लोग? पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब यह है कि रोशनी का बिखर जाना, अलग हो जाना एक दूसरे से। प्रिज्म के अंदर जब रोशनी गुजरती है तो वो पोलराइज हो जाती है, इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेन होता था वेव थियरी से। इसी तरीके से ये जो साए बनते हैं आपके, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी एक्सप्लेन होता था, इंटरफेरेंस का फिनोमेना भी एक्सप्लेन होता था, और ये समझा जाता था ये बिल्कुल यकीनी सच्चाई है कि साइंस में या फिजिक्स की रोशनी में लाइट ट्रेवल कर दिया इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। एक आदमी आया, उसका नाम था प्लैंक्स। प्लैंक्स ने आगे कहा लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। पैकेट्स, और उस पैकेट का नाम उसने रख दिया फोटॉन्स। उसने कहा लाइट ट्रेवल कर दिया इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, पैकेट थियरी ऑफ लाइट उसने दी। जब प्लैंक्स ने पैकेट थियरी दी तो आपको पता है प्लैंक्स के साथ लोगों ने क्या किया? प्लैंक्स का तमाशा बना दिया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उस पर भपतियां कसी, उसका अहमकाना साबित किया और उसकी थियरी को उठाकर रिजेक्ट कर दिया। प्लैंक्स एक बड़ा आदमी था लेकिन वो डिफेंड नहीं कर पाया अपनी थियरी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा प्लैंक से कि तुम कहते हो कि लाइट ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, साबित करो इस बात को, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करो, पैकेट थ्योरी से इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करो। इंटरफेरेंस यह है कि जब एक वेव ऑफ लाइट दूसरी वेव ऑफ लाइट पे गिरती है तो क्रश क्रस्ट पे और ट्रफ ट्रफ पे जब गिरता है तो वो रीइंफोर्स होती है और ब्राइट बैंड पैदा हो जाता है। अगर क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे को क्रॉस कर दें, डार्क बैंड पैदा होता है और अंधेरा हो जाता है। तो ये एक्सप्लेन करो पैकेट थ्योरी से, प्लैंक एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसका मतलब है प्लैंक की थ्योरी फॉल्सिफाई हो गई ना, गलत साबित हो गई तजर्बे की रोशनी में। फिर लोगों ने कहा अच्छा पोलराइजेशन एक्सप्लेन करो, पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दूसरी बार गलत साबित हो गई। फिर लोगों ने कहा अच्छा डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करो, डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन नहीं कर सका अपनी थ्योरी से, तीन बार गलत साबित हुई। लिहाजा लोगों ने उसकी थ्योरी को गलत साबित करके उठा के बाहर फेंक दिया, फेंक दिया। 17 साल बाद प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल किया बोहर में। बोहर काम कर रहा था एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर। एटम के स्ट्रक्चर पे जब वो काम कर रहा था तो बोहर ये कहता था कि भाई ये एटम के अंदर से रोशनी निकलती है, कभी रोशनी निकलती है कभी अंधेरा हो जाता है, कभी रोशनी निकलती है कभी अंधेरा हो जाता है। इसे हम कहते हैं फिजिक्स में, क्या कहते हैं इसको, है? लाइन स्पेक्ट्रम्स, कि एक रोशन फिर एक तारीख, फिर एक रोशन फिर एक तारीख, पैटर्न क्यों बन रहा है? अगर रोशनी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से पैदा हो रही है, इलेक्ट्रॉन तो मुस्तकिल घूम रहे हैं तो मुसलसिल रोशन निकलना चाहिए या मुसलसिल तारीख निकलना चाहिए, कभी तारीख और कभी रोशन, ये क्या चक्कर है? तो ये कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लासिकल फिजिक्स मौजूद थी। बोहर जो था, प्लैंक की क्वांटम थियोरी उसने देखी और उसने कहा मेरे ख्याल में प्लैंक ठीक कहता है, और उसने कहा कि ये जो पैकेट थियोरी है इसकी बुनियाद पे लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एक पैकेट फोटोन का छोड़ देगा तो रोशन बैंड पैदा हो जाएगा। तो पैकेट थियरी ने एक्सप्लेन कर दिया लाइन स्पेक्ट्रम को। और बोहर चूंकि बहुत बड़ा फिजिस्ट था, यानी कि प्लैंक से बहुत बड़ा थिंक करता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल जाइंट था वो, और उस वक्त का सबसे बड़ा फिजिस्ट माना जाता था, किसी माई के लाल में जरूरत नहीं हुई कि आगे उसके सामने खड़ा हो जाता बोहर के। तो लोगों ने कहा कि भाई ये बताओ कि डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, और उन्होंने कहा कि लाइट जो है उसकी ड्यूअल नेचर है, लाइट की ड्यूअल नेचर है, कभी वो पैकेट में सफर करती है पाकिस्तानियों की तरह, कभी कुछ कभी कुछ, हजरत साकी का कदम यूं भी है यूं भी है यूं भी है यूं भी है, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा, तो कभी इसकी मर्जी आती है पैकेट, कभी इसकी मर्जी आती है। तो लोगों ने कहा भाई ये क्या बात हुई, फिजिक्स में ऐसा कैसे हो सकता है? जिस तरह हम कहते हैं भाई चाहे देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ लो, चाहे बरेलियों के पीछे पढ़ लो, हो जाती है नमाज, क्यों? उम्मत का तामुल है, तामुल है उम्मत है। बल्कि इमाम तैमिया ने तो यहां तक कहा कि शिया हजरात के पीछे भी नमाज हो जाती है, उम्मत का तामुल है, तामुल है उम्मत है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो मजहब की तरह हो गया। तो फिजिक्स तो साइंस है, फिजिक्स तो ये है। तो उसने कहा भाई देखो फिजिक्स बुनियादी तौर पर क्लासिकल फिजिक्स के उसूल अलग है और क्वांटम फिजिक्स के उसूल अलग है। एक फिजिक्स नहीं है, क्लासिकल फिजिक्स अलग है क्वांटम फिजिक्स। जब तुम क्लासिकल फिजिक्स में काम करोगे तो तुम ईमान ले आओ इस बात पे कि लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और जब तुम क्वांटम फिजिक्स में काम करो तो ईमान ले आओ इस बात पे कि लाइट ट्रेवल कर दिया इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। इस सवाल में नहीं पढ़ो कि लाइट ट्रेवल करती है पैकेट में, या एक बात बताएं जैसा नाम मौलाना साहब से, हजरत एक बात बताएं। भाई मैं ऐसा समझता हूं, میرا اشتہار یہ کہہ رہا ہے آپ کسی اور طرح کر لو. ایک بات بتائیں, ایک بات تو فزکس بھی نہیں بتاتی. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا, جیسے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں عید کا چاند, یہ بتاؤ کیسے پتا چلے عید کا چاند. یہ ایک بات بتائیں بھائی, عید کا چاند جس کو نظر آ جائے کر لے عید. ایک ہی دن سب لوگ عید کیوں کریں؟ اس کا کیا تعلق؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ لونر جو کیلنڈر ہوتا ہے نا, اس میں ویریشن ہوتی ہے ہمیشہ سے رہی ہے. لونر کیلنڈر اور ہیلیو, جائیں کہ سورج کی بنیاد پہ آپ چلیں گے تو سورج تو حرکت کر نہیں رہا, تو ایک ہی دن آئے گی نا 24 دسمبر. لیکن اگر آپ چاند کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ کے دن 365 نہیں رہتے, کبھی بڑھ جاتے ہیں کبھی گھٹ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو بتانے کا مطلب یہ کہ کلاسیکل فزکس اور کوانٹم فزکس دو الگ الگ ریسرچ پیراڈائمز ہیں, سٹرکچرز ہیں. ایک سٹرکچر یہ, ایک سٹرکچر یہ. نہ قطعی طور پر یہ صحیح ہے, نہ قطعی طور پر یہ صحیح ہے, نہ قطعی طور پر یہ غلط ہے, نہ قطعی طور پر یہ غلط ہے. تو اس کا مطلب ہے سٹرکچرلسٹ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو سائنس کنفرم کرتی ہے نہ ڈسکنفرم کرتی ہے. یہ آپ کے ایمان پر ہے, آپ کس چیز پہ ایمان لیں. لیکن کون کے یہ الفاظ ہیں, شفٹ آف پیراڈائم از جسٹ لائک اے ریلیجس کنورژن. اگر آپ کلاسیکل فزکس میں کام کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں اب میں کوانٹم فزکس میں کام کروں گا, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا ایک مذہب سے ایمان اٹھ جائے, دوسرے مذہب میں آپ کا ایمان آ جائے, اس میں آپ داخل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, کلاسیکل فزکس کو چھوڑ کے کوانٹم فزکس میں چلے جاؤ, کوانٹم فزکس کو چھوڑ کے ریلیٹیوسٹک تھیوری پہ چلے جاؤ. یو نو واٹ آئی مین؟ تو بتانے کا مطلب یہ کہ اسٹرکچرلسٹ وہ لوگ ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ سائنس کے اندر نہ تو انڈکشن ہے, نہ تو انڈکشن ہے, نہ فالسیفیکیشن ہے, اسٹرکچرلسٹ ہے. سوال یہ ہے کہ اسٹرکچرلسٹ پوزیشن ٹھیک ہے, انڈکٹیوسٹک پوزیشن ٹھیک ہے یا فالسیفیکیشن پوزیشن؟ یس, نہیں نہیں, عبدالسلام نے گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری نہیں دی. عبدالسلام نے گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری کے بارے میں ایکسپلینیشن دی جو کہ اسٹیفن ہاکنگز نے بعد میں ریجیکٹ کر دی. اس وقت دنیا میں کوئی گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری موجود نہیں ہے, یہ میں پورے کانفیڈنس سے آپ کو بتا رہا ہوں. دیر از نو گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری. گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری بھائی کیا ہے؟ اس روسٹرم کو اگر آپ دیکھیں گے نیوٹونین فزکس کی روشنی میں, تو نیوٹونین فزکس یہ کہے گی کہ اس کا ماس کبھی تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ماس ایبسلوٹ رہے گا, چاہے اس روسٹرم کو تم یہاں پہ رکھو چاہے چاند پہ لے جاؤ, ماس ریمینز کانسٹنٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو کوانٹم میکینکس کے تھرو دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ایٹم کی جو پوزیشن ہے, الیکٹرانز کی جو پوزیشن ہے, اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس کی موشن کو روکنا پڑے گا. اگر آپ اس کی موشن کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس کی پوزیشن چھوڑنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیک وقت آپ دونوں چیزوں کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے اس میں انسرٹینٹی ہے. ہائزنبرگ نے انسرٹینٹی پرنسپل دے دیا. اس کا مطلب ہے مادہ بنیادی طور پر سرٹن نہیں, انسرٹن ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ سرٹن ہے یا انسرٹن ہے, تو آپ کے پاس اگر میکرو پلین پہ دیکھیں گے, اجسام کی سطح پر دیکھیں گے, تو نیوٹونین فزکس فنکشن کرے گی. لیکن اگر آپ مائکرو کاسمک پلین پہ چلے جائیں گے, یعنی کہ سب ایٹامک پارٹیکلز کے لیول پہ چلے جائیں گے, اس روسٹرم کے ایٹم اور उसके पार्टिकल्स के ऊपर जाकर इसे एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर अनसर्टेनिटी होगी। तो सवाल यह है कि आपके पास कोई एक थ्योरी है जो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को बैक वक्त एक्सप्लेन कर दे, ये कहते हैं कोई नहीं है। स्टीफन हॉकिंग्स कहता है वी डोंट हैव एनी ग्रैंड यूनिफिकेशन थियोरी विच कैन एक्सप्लेन द सर्टेनिटी ऑफ मैक्रोकॉस्मिक वर्ल्ड एंड माइक्रोकॉस्मिक अनसर्टेनिटी। ग्रैंड यूनिफिकेशन थियोरी अभी मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं यह आपके ऊपर है। इसमें एक रिलेटिविटी है। तीसरा जो एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है वो देता है अनार्किक थियरी ऑफ साइंस। अनार्किक थियरी ऑफ साइंस, इसका नाम है फेयरआरबेंड। फेयरआरबेंड ये कहता है कि देखो भाई, इल्म जो होता है ना उसके मुतालिक आपके कुछ मफरूजात होते हैं, हार्ड कोर्स होती हैं। हर इल्म के कुछ बुनियादी मफरूजात होते हैं। अगर मैं आपके उस मफरूजे से मुत्तफिक हूं तो आप में और मुझ में गुफ्तगू हो सकती है। अगर मेरे और आपके मफरूजात मुख्तलिफ हैं तो मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकता। वो ये कहता है कि साइंस एक इल्म है लेकिन साइंस के कुछ बुनियादी मफरूजात हैं हकीकत से मुताल्लिक। इसी तरीके से दुनिया में दूसरे उलूम भी हैं, मसलन मैजिक। मैजिक को भी जो है फेयरआरबेंड एक इल्म मानता है। आप लोग मैजिक को इल्म मानते हैं नहीं है? जादू इल्म होता है या नहीं है? होता है। आप लोगों ने जादू करवाया है किसी के ऊपर है? नहीं, तुम जादू को नहीं है, नहीं नहीं मानते, जादू नहीं होता। नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जादू होता है? एक आदमी जो था वो इंडिया में, हमारे वालिद अभी गए हुए थे तो वहां पे वो लगा हुआ था, मेला लगा हुआ, तो बच्चों के साथ वो भी गए। तो उसमें एक आदमी जो था हिंदू था, कर्तव्य करके दिखा रहा था। कर्तव्य क्या कर रहा था? बकरी खड़ी हुई थी, कह रहा देखो मैं बकरी के मुंह से निकलूंगा। अब खड़े होकर देखते, बकरी के मुंह में से निकलता, बार बार बकरी यूं करके मुंह खोलती, मुंह के अंदर से निकला। इतना बड़ा आदमी बकरी के मुंह से निकल रहा है, कमाल है। बार बार पैसे, तो अब्बा कह रहे हैं कि मैं चकरा गया, मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा बकरी के मुंह से कैसे निकल रहा है ये। तो चार पांच छह बार उन्होंने 100-100 रुपए के टिकट ले लेके जाता, वो अपना मुंह से निकला, फिर नहीं भूल में हो गया। अच्छा, वहां पर एक आदमी भी था, एक आदमी आया और वो बेच रहा था जड़ी बूटियां मेले में ही, जड़ी बूटियां। लेकिन चूंकि वो वहीं का था, वो भी अंदर तंबू के अंदर वो भी घुस के आ गया। उसने सर के ऊपर एक वो जड़ी बूटियों का गट्ठा भी रखा हुआ था और भी खड़ा होके देखने लगा। तो मुंह में से निकला तो हमारे अब्बा कहने, यार इसके मकरी के मुंह में से निकलता है, इसे कपड़े तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, खराब कुछ क्यों नहीं होते। तो जो गट्ठा सर पे रख के खड़ा हुआ था ना, उसने कहा अरे वो उसके दो टांगों के सामने वाली टांगों के गर्दन के नीचे से निकलता है, नजर नहीं आ रहा आपको? तो मेरे अब्बा ने कहा नहीं। अच्छा, वो जो था वो कहने लगा क्या भाई, तो क्या कह रहा हूं मैं, इसमें मुंह में से नहीं निकल रहा? तो बोले कहा मैं देख लिया, दो टांगों के नीचे से निकल के आते। वो कह रहा गट्ठा गट्ठा रख नीचे, गट्ठा रख फिर देख, गट्ठा पे रख। वो गट्ठा रखे नहीं। बोला भाई इतने पैसों का ये है वो है। उसने कहा कितने का है ये गट्ठा? बोलने लगा अभी ये 1000 रुपए का। बोले ये लो 1000 रुपए। 1000 रुपए दिए, पूरा गट्ठा खरीद लिया। गट्ठा खरीद के अपने पास रख लिया। बोला आप देख मैं निकलूंगा।
हो गया,
फिर मुंह में से निकल गया, वो देख रहा, बोला हाँ आप तो मुंह में से निकला बहुत बार मुंह में से निकला, मुंह में से निकला, मुंह में निकला। अब्बा ने 1,000-1,500 इसमें जाया किया। उसके बाद कहने लगे मैं जो है बाहर निकला तो मेरे अब्बा के जो भाई हैं वो कहने लगे आपको पता है क्या हुआ, वो नजर बंद तो कर देता था लेकिन वो जो गट्ठा था ना उसके हाथ में, उसमें थी जड़ी बूटी, वो जड़ी बूटी अगर आपके पास होगी ना तो नजर बंद नहीं कर पाएगा वो आप। तो जब तक उसके सर पे गट्ठा रखा हुआ था ना वो उसको नजर बंद नहीं, उसको नजर आ रहा था कि वो अगली दो टांगों के बीच में से इस तरह निकल के आता है, सब वो देख लेता था, लेकिन जब उसके सर से गट्ठा उतरवा दिया उसने तो वो उसकी भी नजर बंद कर दी उसने। तो सवाल ये है कि ये एक आर्ट तो है ना उसके पास, फर्ज कर लेते हैं इससे भी ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट्स कोई कर सकता है, इससे ज्यादा भी कुछ कर सकता है कोई आदमी, हाँ। तो सवाल ये है कि उसे हम इल्म कहेंगे या नहीं, क्या मैजिक कोई इल्म होता है या नहीं। फेयर आर्बेंट कहता है मैजिक भी एक इल्म होता है लेकिन वो साइंटिफिक नहीं होता, साइंस के जरिए आप मैजिक को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मैजिक के जरिए साइंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ये दो अलग अलग पैराडाइम है। इसे वो कहता है इनकमेंशोरेबिलिटी, आई इनकमेंशोरेबिलिटी। INCOMMENSURABILITY, इनकमेंशोरेबिलिटी, के साइंस एक इल्म है उससे आप काम ले सकते हैं, आप अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन दुनिया में दूसरे उलूम भी हैं, मैजिक भी एक इल्म है, मजहब का भी अपना इल्म है, शाओलिन्स के अपने इल्म है, चाइनीज के अपने इल्म है, पर्शियंस के अपने इल्म है, बेबिलोनियंस के अपने उलूम थे, नेबिटियंस के अपने उलूम थे, ये उलूम जिंदा रह सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने तमाम उलूम को जज करना शुरू कर दिया साइंस की बुनियाद पे। तो साइंस सिर्फ उन उलूम को एक्सप्लेन कर सकती है जो साइंस के मफरूजात से हम आहंग है, लेकिन वो चीजें जो साइंस के मफरूजात से हम आहंग नहीं है उनको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो जिनको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप उसको इल्मी नहीं मानते और उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि वो उलूम जो दुनिया में हमेशा से मौजूद रहे हैं खत्म होते चले जा रहे हैं। आज हम अपने उलमा की इज्जत क्यों नहीं करते, हम समझते हैं उलमा के पास जो इल्म है ना वो साइंटिफिक नहीं है। तो साइंटिफिक नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात है कि वो साइंटिफिक नहीं होगा, लेकिन इससे ये इंप्लाई नहीं होता कि वो इल्मी नहीं होता। उलमा का जो इल्म है वो साइंस की कसौटी पे पूरा नहीं उतरता, तो क्या साइंस का इल्म उलमा की कसौटी पे पूरा उतरता है। लेकिन आप समझते हैं कि साइंस की कसौटी ऑब्जेक्टिव है, हालांकि अभी आपके सामने मैंने कोई नॉन एकेडेमिक गुफ्तगू नहीं की, मैं आपको बता रहा हूं कि 18वीं सदी में साइंस का तसव्वुर यह था, 19वीं सदी में ये हो गया, 20वीं सदी में ये हो गया, 20वीं सदी के अवाखिर में ये हो गया। जो दुनिया के अजीम तरीन लोग हैं, जैसे हमारे यहां कहते हैं ना साबित हो गया, साबित हो गया, ये साबित हो गया, वो साबित हो गया, हम समझते हैं साबित हो गया खुद ही। मसलन आप लोगों में से कौन लोग हैं जो अपने घर में वो इस्तेमाल करते हैं एंटी बैक्टीरियल सोप सेफ गार्ड या अपना लाइफ बॉय या डेटॉल सोप, कौन लोग, हाँ ऊंचा हाथ उठा, ऊंचा सही। तो आप लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, हैं? इश्तिहारी चमक की वजह से आप इस्तेमाल नहीं करते, महंगा है, जर्म ज्यादा इस्तेमाल होंगे वहां इस्तेमाल होगा। अच्छा अगर आप लोग अपने बच्चों को, अगर आपके पास मौका हो तो बच्चों को आप एंटी बैक्टीरियल सोप से नहलाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे,
हैं? आप लोगों को क्या ये पता है कि साबित हो गया है कि जर्म से बचाता है एंटीबैक्टीरियल सोप? सही है, ये सही बात है। आप लोग साइंटिफिक दौर में जिंदा हैं, साइंस में हर चीज साबित हो जाती है। क्या ये साबित हो चुका है? हैं? अच्छा, आपके ख्याल में एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना चाहिए? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि अभी आप लोग घर जाइएगा आज और अपने गूगल अगर आपका है उसके अंदर डालिएगा एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटी बैक्टीरियल सोप, लिखें और एंटर मारें। एंटर मारते ही सैकड़ों साइट्स खुल जाएंगे। इसका मतलब यह है पूरी दुनिया में ये एस्टैब्लिश्ड है साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर के एंटी बैक्टीरियल सोप इंतहाई नुकसानदेह होता है। लेकिन ये इत्तला आपको किसी डॉक्टरों की अवलीन पसंद हो या सफेद कोट पहन के आ जाता है, पता नहीं कौन हो वो, पता हम में से कोई साफ सुथरा हो, मैं तो खैर मैला लगता हूँ, वो जो लोग शक्ल ऐसी है कि शरीफ आदमी जो है वो पुलिस वाला समझता है, पुलिस वाला डाकू समझता है, डाकू जो है वो जो है दहशतगर्द समझता है, यू नो। तो लेकिन अगर कोई साफ सुथरा आदमी हो तो उसको कोट पहनाए तो डॉक्टर बन जाएगा क्या? वो डॉक्टरों की अवलीन पसंद है ये सेफ गार्ड। तो मैं आपको बताऊं कि डॉक्टरों की अवलीन पसंद नहीं होता। आपकी बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया की एक लेयर होती है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है सन रेडिएशन से। जब आप एंटीबैक्टीरियल सोप लगाते हैं तो हार्मफुल बैक्टीरिया तो खत्म हो जाते हैं, हेल्पफुल बैक्टीरिया भी मर जाते हैं सारे। तो आपकी स्किन क्या हो जाती है? अनप्रोटेक्टेड हो जाती है। जब सन रेज आपके जिस्म पे पड़ेंगी तो स्किन बर्न कर देगी, स्किन बर्न हो जाएगा, चेहरे पे पैचेस पड़ जाएंगे। सही है? अच्छा, आप जाओगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, वो भी साइंटिस्ट है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओगे तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कहेगा आपकी स्किन बर्न हो गई है और सूरज की रोशनी से हो रही है। सूरज अचानक सूरज को क्या प्रॉब्लम हो गई आपके साथ? सूरज जो है उसने आपकी स्किन को बर्न नहीं किया बल्कि आपने अपनी स्किन के प्रोटेक्टर्स को मार डाला। तो वो आपसे कहेगा स्किन बर्न हो रही है लिहाजा आप लगाएं सन ब्लॉक फेयर एंड लवली का। जो भी कंपनी ने उसको पैसे दिए होंगे बदमाश को वो आपको प्रिस्क्राइब कर देगा, सन ब्लॉक आप लगा लोगे और सन ब्लॉक लगा के निकल जाओगे। मैं बोले आओ सूरज की तरफ देख के, हाँ आप बोल भाई बड़ा स्टाइल वगैरह मारोगे। लेकिन स्किन बर्न का मसला जो है वो हल नहीं होगा, फिर भी चेहरे पे फिटकार फिर भी बरसती रहे। अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो लगा रहा हूं। फिर आप जाओ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जब दोबारा जाओगे तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपसे कहेगा कि यार मसला ये है कि जो सनब्लॉक होता है ना वो तुम्हें प्रोटेक्ट तो कर रहा है लेकिन तुम्हारे जो स्किन की पोर्स है ना उसमें बैठ जाता है, वॉश नहीं होता। ये सनब्लॉक इतनी आसानी से वॉश नहीं होता। वो तमाम खवातीन और हजरात जो सनब्लॉक लगा रहे हैं उनको ये है कि वो सनब्लॉक इतनी आसानी से वॉश नहीं होता, ठीक है? तो वो आपको ये कहेगा कि आप ऐसा करो आप लो क्लेंजिंग लोशन भी, एंटीबैक्टीरियल सोप लेके उनको मारते रहो बैक्टीरिया जो कुदरत ने डिफेंस मैकेनिज्म दिया, और सनब्लॉक लगा लो, फिर सनब्लॉक को धोने के लिए क्लेंजिंग लोशन इस्तेमाल करो। क्लेंजिंग लोशन जब आप इस्तेमाल करते हैं ना तो वो करता है क्लेंज, क्लेंजिंग करता है यानी कि छील देता है। तो आपकी स्किन को के ऊपर एक ऑयल होता है, वो खबीस आपको ये नहीं बताता कि तुम्हारी स्किन में कुदरत ने एक नेचुरल ऑयल भी रखा हुआ है, ठीक है? तो क्लेंजिंग लोशन क्या करता है, उसको भी साफ कर देता है। सनब्लॉक को तो साफ करता है लेकिन आपकी बॉडी का जो ऑयल होता है ना नेचुरल ऑयल हर इंसान के जिस्म के हिसाब से वो पैदा होता है, और कभी कभार वो कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप अपनी गिजा नॉर्मल रखें, अननेचुरल गिजा ना रखें, तो आपके जिस्म के हिसाब से वो बन, हम लोग अननेचुरल गिजा भी ज़्यादा खाते हैं ना, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन बहरहाल क्लेंजिंग लोशन जब आप लगा लेते हैं तो आपकी स्किन वॉश तो हो जाती है, लेकिन फटने लगती है, क्रैक्स आ जाते हैं, खुश्क हो जाती है स्किन। फिर आप जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो डर्मेटोलॉजिस्ट कहता है आपने चूंकि क्लेंजिंग लोशन लगा लिया है, लिहाजा आपको मॉइस्चराइजर भी लगाना पड़ेगा। तो व्हाट एक्चुअली यू डू, यू कंज्यूम 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, 4 इंडस्ट्रीज को चलाते हो आप। सवाल यह कि ये इत्तला आपको मीरपुर खास तक ये बात आपको पहुंच गई कि आपके जिस्म के ऊपर इंफेक्शन फैलाने वाले जरासीम होते हैं, लेकिन आपको ये इत्तला क्यों नहीं पहुंची कि आपके जिस्म की हिफाजत भी करते हैं बैक्टीरिया? हैं भाई, ऐसा क्यों हुआ कि ये आपको पता चल गया और आज वहाब सूरी आपके सामने ये इंकशाफ कर रहा है, आप लोग स्कूल में पढ़ाते भी हो? तो भाई जो मौजूदा निजाम है ना, वो सच्चाई को फराहम नहीं करता, सच्चाई को फराहम करने के साथ साथ उन सच्चाइयों को छुपा भी देता है जो सिस्टम के खिलाफ होती है, जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होती है। वो कहता है, गैल्मर कहता है, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड इन विच देयर आर ऑलवेज हाफ ट्रूथ्स, हाफ फॉर पब्लिक कंजम्पशन एंड हाफ फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। आधी सच्चाई तुम्हें देते हैं, और हजरत अली का कौल यह है कि आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। जब तुम्हें लगे ना कि तुम्हें आधा सच बोलना है, तो बेहतर यह है कि खामोश हो जाओ। आधी सच्चाई झूठ से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि झूठ जब आप पूरा बोलते हो ना, तो सिक्का चलता है सच का, पूरा झूठ है। हाँ, नमाज करीब भी मत जाओ, जैसे और ये निकाल दिया कि शराब पी के नमाज करीब, शराब पीकर मस्जिदों के करीब मत आओ। आपने से ये आयत लिख दी मस्जिद के दरवाजे पे, मस्जिदों के करीब मत आओ, और डंडा लेके बैठ जो भी आए उसको डंडे लगा दे। साले नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ मस्जिदों के करीब नहीं आओ, किसी को मस्जिद करीब नहीं आने दू। हजरत पूरी आयत तो पढ़े, शराब पी के मस्जिद के करीब नहीं, समझे? तो आधी सच्चाई जो होती है वो डेंजरस होती है। तो इस तरह बेशुमार सच्चाइयां। पाकिस्तान के अंदर एक आदमी है, सिंध में ही काम करता है, उसका नाम है गफ्फार बिल्लू। गफ्फार बिल्लू जो है पाकिस्तान में पीडियाट्रिक्स का पाइनियर डॉक्टर है, बहुत ही नेक और बहुत ही मुहिब वतन और इंतहाई शरीफ इंसान है। एक हवाई चप्पल और शलवार कमीज पहन के पूरी दुनिया में घूमता, और आगा खान में पीडियाट्रिक्स का हेड था वो, सही है? अब कराची में मेमन हॉस्पिटल खुल गया, वहां चला गया। सिंध में बहुत बहुत सारा काम करता है, हैंड्स के नाम से उसकी और एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पैसा बाहर से नहीं लेता, एक पाई किसी बाहर की इदारे से नहीं लेता। वो आदमी पिछले 15 साल से चीख रहा है ये बात कि भाई ये एंटी बैक्टीरियल सोप बच्चों को नहीं लगाओ, उसके नतीजे बच्चों का एलर्जी रिएक्शन होने लगते हैं, बच्चों का डिफेंस मैकेनिज्म तबाह हो जाता है। कुदरत ने बच्चों के अंदर वायरस और बैक्टीरिया से मुकाबला करने की जबरदस्त सलाहियत रखी होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं जो माँ का दूध पीते हैं उनके अंदर तो जबरदस्त सलाहियत होती है। 60 ईयर्स तक आपके जिस्म के अंदर वो काम करता है। जिस बच्चे ने अपनी माँ का दूध पिया है 60 साल तक उसके डिफेंस मैकेनिज्म को वो प्रोटेक्ट करता है, यानी कि आपकी मां का असर 60 साल की उम्र तक आपके जिस्म से नहीं जाता। ये और बात है कि कल खालिद भाई ने बताया उस मां को ले आके हम ओल्ड हाउस में फेंक आते हैं, जिसकी वजह से तुम बीमारियों से बच रहे हो, उसी मां को उठा के बाहर फेंक के आ जाते हो। उसका जो खून है ना, वो तुम्हारे खून के अंदर मिला हुआ है, लड़ता है वो बीमारी से, तुम्हें बीमार नहीं होने देता। और औरतों के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है मर्दों के मुकाबले में 30 गुना ज्यादा ताकतवर होता है, क्यों? क्योंकि उसके नतीजे में दुनिया में नए इंसान वजूद में आने, उसके अंदर भी मर्दों से ज्यादा जेनेटिकली स्ट्रांग होती हैं औरतें। इसी वजह से ज्यादा औरतों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा होती है। मर्द पहले मर जाते हैं, औरतें ज्यादा देर से मरती हैं। क्यों? क्योंकि बीमारियों से लड़ने की सलाहियत उनकी ज्यादा होती है, वो ताकतवर होती है, बीमारियों को ओवरकम कर लेती हैं वो अपनी जेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू। लेकिन गफार बिल्लू की जो ये बात थी कि भाई आप एंटीबैक्टीरियल सोप इस्तेमाल करोगे तो बच्चे का डिफेंस मैकेनिज्म इम्यून हो जाता है। जब आप किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, वो इम्यून हो जाता है। अगर तुमने अपने मसल्स को इस्तेमाल नहीं किया, मसल्स नहीं बनेंगे। मसल्स को इस्तेमाल करोगे, मसल्स ताकतवर होंगे। इसी तरह अपने इम्यून सिस्टम को अगर तुमने इस्तेमाल ही नहीं करने दिया तो वो डेड हो जाएगा। हैंड सैनिटाइजर्स यस डॉक्टर लगाते हैं, लेकिन इस साइड पे लगाते हैं क्योंकि इधर नहीं होता वो बैक्टीरिया, इधर होता है। तो बताने का मतलब ये कि जिस दुनिया में हम जिंदा हैं उसमें साइंस को बुनियाद बनाकर हम जैसी कौमों को हमारे ही लोग धोखा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कहीं आप समझे मैं ये कह रहा हूं कि भाई साइंस को छोड़ दो, जाके जादू टोना सीखो और जो है कब्रों के अंदर बैठ के जो है कीचड़ खाओ और जो है सिफली अमल के काले इल्म के माहिर अपना आमिल सैयद दिलबर जैदी मौलिज खसूसी ये बन जाओ। मैं ये नहीं कह रहा भाई, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि साइंस भी तमाम उलूम में से एक इल्म है, लेकिन इसकी बुनियाद पे तमाम उलूम को नहीं जांचो। ये भी एक इल्म है, इसको भी इंशाल्लाह इस्तेमाल करो, लेकिन इसको बुनियाद बनाकर तमाम उलूम को तबाह करना, हिकमत को भी तबाह करना और इल्मुल कलाम को भी तबाह करना और उलमा का भी मजाक उड़ाना और जो है सूफिया की दाढ़ियां खींचना, ये कौन सी शराफत है भाई, ये कौन सी इंसानियत है? इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल नहीं पता साइंस क्या है। अगर आपने किसी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाके ये कहा साइंस सच को साबित करती है, मैं आपको यकीन से बता रहा हूं वहां पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे ना, हक्के बक्के रह जाएंगे, मुंह खुला का खुला रह जाएगा होंगे कि इस बेवकूफ को देखो ये 21वीं सदी में 19वीं सदी का तसव्वुर साइंस पेश कर रहा है। ये 19वीं सदी का तसव्वुर साइंस था। साइंस हर चीज को साबित करती है, साइंस हर चीज को साबित नहीं करती, कुछ चीजों को साबित करती है। और जब वो साबित हो जाता है तो साबित होने के बाद वो इम्कानी सच्चाई होती है। साइंस हर चीज को रद्द नहीं करती, कुछ चीजों को रद्द करती है और वो रद्द भी इम्कानी रद्द होता है। साइंस एक इल्म को दूसरे इल्म पर फौकियत और कस नहीं सकती, साइंस साइंस को कस सकती है। यानी कि साइंटिफिक एनालिसिस की वीकनेस बता सकता है। यानी कि अगर फर्ज किया एक डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, तो दूसरा डॉक्टर बता देगा कि इसने ये मिस्टेक की है। ठीक है, तो साइंस साइंटिफिक मेथड का सही इस्तेमाल हुआ है या साइंटिफिक मेथड का गलत इस्तेमाल हुआ है, साइंस बता देगी। लेकिन साइंस ये नहीं बता सकती कि आपने सूफिया के जो तरीका है उसको जब इख्तियार किया है तो आपके कल्ब के अंदर जो तब्दीली हुई है वो वाकई तब्दीली रूनुमा हुई है या नहीं हुई, ये साइंस नहीं बता सकती, ये उसके दायरे से बाहर है। अब अगर वो नहीं बता सकती तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ कह रहा है। द कन्फेशन ऑफ एमिली रोज किसी ने देखी है? द कन्फेशन ऑफ एमिली रोज, हाँ अच्छा, अभी हम ब्रेक लें क्या? ठीक है, द कन्फेशन ऑफ एमिली रोज एक मूवी है, लेकिन ये ट्रू स्टोरी है। ट्रू स्टोरी क्या है? ट्रू स्टोरी है कि अमेरिका में एक लड़की थी, उसका नाम था एमिली रोज। एमिली के ऊपर जिन चढ़ गया, तो एमिली का इलाज करवाने के लिए माँ बाप उसका साइकोलॉजिस्टों के पास और साइकोथेरेपिस्टों के पास लेके जाते रहे काफी दिन तक, बच्ची का प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। ठीक है, तो माँ बाप ने कहा कि इसके ऊपर शायद जिन चढ़ गया हो, तो फिर वो पादरी के पास लेके चलेगा। पादरी उसका जिन उतारने की कोशिश करता रहा। जिन उतारने का जो तरीका होता है क्रिश्चियंस के अंदर, उसे हम कहते हैं एग्जॉर्सिज्म। जिन उतारने के अमल को हम क्या कहते हैं? एग्जॉर्सिज्म। सही है? तो एग्जॉर्सिज्म जो था वो करते रहे उसका, वो जो पादरी था, पादरी एग्जॉर्सिज्म करता रहा। लेकिन इस दौरान में बच्ची मर गई। तो पुलिस आई और पुलिस ने बच्ची के माँ बाप को और उस पादरी को पकड़ के बंद कर दिया। फिर बच्ची के माँ बाप को ये छोड़ दिया कि तुम पादरी के बहकावे में आ गए, और पादरी से कहा कि तुमने जो जिन उतारने की कोशिश की इसकी वजह से ये बच्ची मर गई। तो पादरी ने कहा, भाई मैंने बच्ची को नहीं मारा, मैं तो जिन उतारने की कोशिश कर रहा था। तो वो जो है, सब लोग जो साइकोलॉजिस्ट थे और साइको एनालिस्ट थे और साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने जाहिर उसका मजाक वगैरह उड़ाया। तो अदालत में केस चला। अब कोई आदमी जो है वो केस लड़ नहीं रहा था पादरी का। पादरी की जो उस इलाके के अंदर शोहरत थी वो बहुत ज्यादा थी कि ये एक शरीफ आदमी है, हर एक के दुख दर्द में शरीक होता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बदमाशी नहीं करता। तो लोगों की हमदर्दियां जो थी वो पादरी के साथ थी उस इलाके की। तो फिर पादरी ने एक वकील किया। वो जो वकील थी वो एक ऐसी थी, वो एक ऐसी औरत थी जो के खुदा पे ईमान नहीं रखती थी, दहरिया। सही है? उसने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। पादरी की तरफ से वो केस लड़ी। पादरी से उसने पूछा, भाई मुझे बताओ कि ये कैसे कैसे मरी बच्ची। तो पादरी ने ये कहा कि भाई ये बच्ची का जिन जब मैं उतारने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने जो इंस्टीट्यूट का साइकियाट्री का डिपार्टमेंट का हेड है इसको भी बुला लिया था, जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड है इसको भी बुला लिया था, और मैंने इन दोनों की मौजूदगी में इसका जिन उतारने की कोशिश की, जिन उतारने की कोशिश की, और मैं जिन नहीं उतार सका, ये दोनों भाग गए, और इन दोनों ने कहा कि हमें यकीन आ गया है कि इसके ऊपर जिन है, लेकिन तुम हमारा नाम नहीं लेना वरना हमें नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों बंदों का नाम तो तुम अदालत के सामने नहीं लेना, क्योंकि मैंने इनसे वादा किया है, चाहे मैं फांसी पे ही चढ़ जाऊं। तो उसने कहा कि नहीं, तो फिर तुम जिन क्यों नहीं उतार सके? तो उसने कहा, जिन इसलिए नहीं उतार सका कि इसके ऊपर एक जिन नहीं था, 5 जिन थे, और वो मेरी रूहानी ताकत इतनी नहीं थी कि मैं उनको हटा सकता, लिहाजा मुझे शिकस्त हो गई। जब एग्जॉर्सिज्म में एक आदमी को शिकस्त हो जाती है तो फिर दोबारा वो एग्जॉर्सिज्म नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि शैतान मेरे से ज्यादा अगर ताकतवर होगा तो मुझे गिरा देगा। तो फिर ये खैर केस पूरा चला, पूरा केस अदालत के सामने चलता रहा, लेकिन पादरी ने आखिर में उसको एक खत दिया एमिली का। एमिली ने उस खत में ये लिखा था कि जिस रात उसका फाइनल एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश की गई आखिरी दिन, तो पादरी ने बड़ी कोशिश की लेकिन उन जिनों ने उठाकर उसे बाहर फेंक दिया, उस पूरी देवड़ी से जहां पे घोड़े रखे हैं उससे उठा के बाहर फेंक दिया उसको, जिसकी वजह से पादरी की 2-3 हड्डियां टूट गई और वो बेहोश हो गया। तो उसके बाद जब ये उठी, होश में आई एमिली, तो एमिली कहती है कि जब मुझे होश आया तो मैंने अल्लाह ताला से ये शिकायत की कि मैं इस माशरे में और इस माहौल के अंदर रहती हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं कोई बदमाशी नहीं की, और मैं चर्च भी जाती थी और बाइबल भी पढ़ती थी, फिर भी मेरे ऊपर इतने सारे जिन चढ़ गए और आपने मुझे नहीं बचाया, तो आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? तो वो कहती है कि मुझे अल्लाह ताला की आवाज आई कि अगर तुम इन जिनों से लड़ते हुए थक गई हो तो तुम मेरे पास आ जाओ, यानी कि तुम वो मर जाएगी और वो मेरे पास आ जाए। तो उन्होंने कहा तो फिर आप मेरी जान खुद ही निकाल लेते। तो उसने कहा नहीं, मैं दरअसल दुनिया को यह दिखाना चाहता हूं कि ये दुनिया मादा परस्त हो गई है और दुनिया को रूह के ऊपर यकीन नहीं रहा, लिहाजा तुम्हारे जरिए मैं लोगों को यह दिखाना चाहता हूं कि रूह कितनी अहम है। तो तुम्हारी जरिए मैं इनकी आंखें खोलना चाहता हूं, तो मैं तुम मेरी मदद करना चाहो तो तुम अपने जिस्म में वापस चली जाओ, और अगर तुम मेरे पास आना चाहती हो, इन जिनों से लड़ लड़ के तुम थक चुकी हो, तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा और तुम्हें जन्नत में भेज दूंगा। तो उसने कहा कि मैं जब इन जिन इस जिस्म में वापस जाऊंगी तो ये जिन मुझसे गंदी गंदी चीजें खिलाते हैं मुझे। वो क्या करती थी? कॉकरोच खाती थी, कॉकरोच, छिपकलियां, शिट, ये वो चीजें खाती थी, यानी कि वो जिन उसको गंदी चीजें खिलाता था ताकि उसकी रूह करप्ट हो। तो उसने कहा कि मुझे ये गंदी गंदी चीजें खिलाते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि अगर तुम खाओगी नहीं तो मसला हल हो जाएगा। तो एमिली ने कहा अच्छा अब मुझे समझ में आ गया। वो अपने जिस्म में वापस गई और उसने खत में लिखा कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये समझ में आ गया है कि मैं इन जिनों को कैसे शिकस्त दूंगी, अब आप नहीं मैं खुद इनको शिकस्त दूंगी। और उसने क्या किया, जिस्म में वापस चली गई और उसके बाद उसने खाना पीना बंद कर दिया। जिन्हों ने बड़ी कोशिश की कि वो कुछ खाए कुछ खाए, उसने ना खाना खाया ना पानी पिया, 10 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया, भूखी रही और मर गई। ये खत एमिली ने लिखा, कोर्ट के अंदर यह खत पेश किया गया। तो कोर्ट में जब यह खत पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये उसका पोस्टमार्टम किया जाए। जब पोस्टमार्टम किया गया बच्ची का, तो बच्ची की मौत की वजह भूख थी, उसने कुछ भी नहीं खाया, 10 दिन तक ना उसने कुछ खाया था ना पानी पिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। तो जज ने कहा कि भाई जब इसकी मौत जो वाकई हुई है वो भूखे रहने से हुई है तो हम पादरी को कुछ नहीं कह सकते, पादरी को उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया। ये रियल जेन्युइन केस है। अब पादरी जो कुछ भी कर रहा था, पादरी उनसे लड़ नहीं पाया, मुसलमान होगा तो कहेगा कि उसके पास जो अल्लाह का कलाम है वो है तो अल्लाह का कलाम, लेकिन उसमें तहरीब हो चुकी है वगैरह वगैरह, इसलिए वो उनको शिकस्त नहीं दे सका। लेकिन बहरहाल पादरी के पास एक एल मैच जिसको साइंटिफिकली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। तो बताने का मतलब ये होता है कि जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जितने साइकियाट्रिस्ट थे साइकोलॉजिस्ट थे वो कभी ये नहीं मानेंगे कि उसके ऊपर जिन है। क्यों? क्योंकि साइंस इस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन एक पादरी इस पे बिलीव करता है। फेयर आर्मेंट क्या कह रहा है? फेयर आर्मेंट कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप साइंस छोड़ दो, मैं आपसे कह रहा हूं दूसरे उलूम को उनके अपने मफरूजात के जरिए समझने की कोशिश करो। अगर आप नहीं समझना चाहते तो उनकी कम से कम तौहीन नहीं करो। दुनिया में दूसरे तरह के उलूम मौजूद हैं। अगर आपने सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज को ही हतमी आखिरी और कतई समझा और दूसरे उलूम को इल्म नहीं समझा, तो इसकी कोई दलील नहीं है कि कल साइंस जब फेल होगी तो आपको बचाने के लिए कौन आएगा। ये जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको इंडक्टिविज्म तफसील से नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है इस वक्त दुनिया में ये तय नहीं है कि व्हाट एक्चुअली साइंस इज, इंडक्टिविस्ट है, फॉल्सिफिकेशनिस्ट है, स्ट्रक्चरलिस्ट है, रिसर्च पैरामीटर्स हैं, अनार्किक है, जिससे जो काम लिया जा सकता है वो ले लें आप, अगर आपको आज जरूरत है आप ले लें, लेकिन इसकी बुनियाद पे मजहबी लोगों की तौहीन ना करें, ठीक है। अभी इसको यहीं पे रोक लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में
चाय का वापस।